हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अथ सूरसुतो राजान् पुत्रयः समकारयात् पुरोधसा ब्राह्मणैश्च यथावद्विज संस्कृतिम् तेभ्यो ददात् दक्षिणा गावो रुक्ममालः स्वलङ्कृतः स्वलङ्कृतेभ्यः सम्पूज्य सवत्सः क्षौममालिनिः। यः कृष्णराम जन्मर्क्षे मनोदत्ता महामतिः ताश्च ददादनुस्मृत्य कंसेन धर्मतो हृतः। ततश्च लब्ध संस्कारौ द्विजत्वं प्राप्य सुव्रतौ गर्गाद्यदुकुलाचार्यात् गायत्रं व्रतमास्थितौ प्रभवौ सर्वविद्यानां सर्वज्ञौ जगदीश्वरौ नान्यसिद्धामलज्ञानां गूहमानौ नरेहितैः। अथो गुरुकुले वासम् इच्छन्ता उपजग्मतुः काश्यं सान्दीपनीं नाम ह्यवन्ति पुरवासिनाम् यथोपसाद्यतौ दन्तौ गुरौ वृत्तिमनिन्दिताम् ग्राह्यन्त उपेतौ स्म भक्त्या देवमिवाद्रितौ। तयोर्द्विजवरस्तुष्टः शुद्धभावानुवृत्तिभिः प्रोवाच वेदानखिलान् साङ्गोपनिषदो गुरुः सरहस्यं धनुर्वेदां धर्मान् न्यायपथांस्तथा तथा चान्वीक्षिकीं विद्यां राजनीतिं च षड्विधां। न पर हर स्वीकार हो गए हैं, दीर्घ कर रहे हैं। राजनीति में सर्वम नरवर श्रेष्ठ सर्व विद्या प्रवर्तक सक्री निगत मात्रेण तौ संज गृहतुर्निप। अहो रात्रैष्टतु षष्ट्या संयत्तौ तावतिः कला गुरुदक्षिणयाचार्यां छन्दयामासतुर्निप। द्विजस्तयोस्तां महिमानमद्भुतम् संलक्ष्य राजन् अतिमानुसिंमतीम् सम्मन्त्र्य पत्न्या स महारणवे मृताम् बालं प्रभासे वरयां बभूवः। तथेत्यथारुह्य महारथौ रथम् प्रभाषमासाद्य दुरन्त विक्रमौ बेलामुपव्रज्य निषीदतुः क्षणम् सिन्धुर्विदित्वार्हरणाहरत्तयः तमाह भगवानासु गुरुपुत्रः प्रदीयताम् योऽसाविह त्वया ग्रस्तो बालको महतोर्मिणा समुद्र उवाच नैवाहार्षमहं देव दैत्यः पञ्चजनो महान् अन्तर्जलचरः कृष्ण शङ्खरूपधरोऽसुरः आस्ते तेनाहृतो नूनम् तच्छ्रुत्वा सत्वरम् प्रभुः जलमाविश्यतम् हत्वा नापश्यद् उदरेर्भकम् तदङ्गप्रभवम् शङ्खम् आदाय रथमागमत् ततः संयमनिम् नाम यमस्य दयिताम् पुरीम् गत्वा जनार्दनः शङ्खम् प्रदद्मौ सहलायुधः शङ्खनिर्हार्दमाकर्ण्य प्रजा संयमनो जमः तयोः सपर्यम् महतीम् चक्रे भक्त्युपबृंहिताम् उवाचावनतः कृष्णम् सर्वभूताशयालयम् लीला मनुष्य हे विष्णु युवयोः करवाम किम् श्रीभगवानुवाच गुरुपुत्रमिहानीतम् निजकर्म निबन्धनम् आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृतः तथेतितेनोपानीतम् गुरुपुत्रम् जदुत्तमौ दत्त्वा स्वगुरवे भूयोः वृणिष्वेति तमुचतुः गुरुरुवाच सम्यक् सम्पादितो वत्स भवद्भ्याम् गुरुनिष्क्रियः कोऽनुजुष्मद्विधगुरोः कामानामवशिष्यते गच्छतम् स्वगृहम् वीरौ कीर्तिर्वामस्तु पावनी छन्दांस जातयामानि भवन्त्विह परत्र च गुरुणैवम् अनुज्ञातौ रथेनान्निलसंभषा आयातौ स्वपुरम् तात पर्जन्यनिनदेन वै समनन्दन प्रजा सर्वा दृष्ट्वा रामजनार्दनौ अपश्यन्तो बहुहानि नष्ट लब्ध धनायव। अथ अनंतर सूर सुतः, सूर के पुत्र श्री वसुदेव जी, राजन हे महाराज परीक्षित, पुत्रयः अपने दोनों पुत्रों के, श्री बलराम और श्री कृष्ण के, समकारयत् सम्यक रूपेण कराए, पुरोधसा पुरोहित जी के द्वारा, श्री गर्गाचार्य के द्वारा, ब्राह्मणैः च और ब्राह्मणों के द्वारा, यथावत् जैसा शास्त्रों में लिखा गया है, द्विज संस्कृति द्विज संस्कार उपनयन संस्कार, इसके पहले यहां पर चर्चा चल रही थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम नंद बाबा के पास आए और उन्हें अपने अखबार में भर करके उनको सांत्वना दिए। नंद बाबा विदा हुए उस समय सबके आंखों में आंसू थे, नंद महाराज के चले जाने के बाद श्री वसुदेव जी जो सूर के पुत्र हैं, जो पिताजी का नाम था सूर, और इस प्रकार जो क्षत्रिय वंश में जन्म लिए थे जदु वंश में, तभी अपने पुत्रों का कृष्ण बलराम का द्विज संस्कार कराए। द्विज संस्कृति का अर्थ है दो बार जन्म देना, द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहते हैं, ये दो बार जन्म होता है, एक बार माता पिता से और एक बार गुरु के द्वारा द्विज संस्कार किया जाता है, जनेऊ यज्ञोपवीत दिया जाता है, तो वह संस्कार कराए। इसके पहले इन दोनों बच्चों का संस्कार नहीं हुआ था, इस समय से नहाना भी नहीं जानते थे। अब देखे उस दिन की जब मथुरा पहुंचे तो सीधे घूमने निकल गए मथुरा में, क्या क्या घूमते घामते, किसी को मारते किसी को कुछ करते चले आए, और शाम को जब आए तो स्नान नहीं किए, केवल चरण धोए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं चरण धोए, और चरण धो करके दूध और भात खा करके सो गए। अभी भगवान इस भावना में है कि हम गोप हैं, गाय चराने वाला क्या नियम पालन करे, ऐसा वो भी परदेश में, मथुरा के बाहर बगीचे में ठहरे थे, बाहर लगभग सटा हुआ बगीचा था, वहीं पर बैलगाड़ियां खोल करके नंद बाबा आदि सब विश्राम कर रहे थे, तो कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ मथुरा जी का दर्शन करके और कई लीलाएं करके जा करके सोए। तो स्नेहवश श्री वसुदेव जी अपने पुत्रों के द्विज संस्कार कराए, संध्या वंदन करना, स्नान करना, वेदों का अध्ययन करना, शास्त्र बांचना, ये सब कई नियम सिखाया जाता है जब उपनयन संस्कार होता है। ऐसा नहीं केवल जनेऊ धुला दिए बस हो गए परफेक्ट, उसका अर्थ होता है बहुत नियम पालन करना। तो कौन किए? इन्होंने कराया, सम अर्थात सम्यक और अकारयत कराए, किसके द्वारा? पुरोधसा और ब्राह्मणश्च। पुरोधस पुरोधा पुरोहित श्री गर्गाचार्य जदुकुल के आचार्य हैं, इनके द्वारा कराए। नंद बाबा के ब्रज में श्रीपाद गर्गाचार्य जा करके नामकरण संस्कार किए थे और आज सेकंड दीक्षा कर रहे हैं, रूपनयन संस्कार। किसका उपनयन संस्कार किया गया? वसुदेव जी किसका कराए? पुत्रयो नतु भग नतु भगवतो, भगवान का नहीं कराया कि भगवान है इनका कराओ, पुत्र हैं, बेटा हैं, बेचारे जीवन में उन्नति करेंगे, ठीक से रहेंगे। उस दिन कुबलया पीड़ की हत्या करके दोनों भाई सभा में घुस गए, हाड़ ले करके, हाथी का दांत और शरीर पर खून लगा है, मद लगा है, कि कोई सभा में प्रवेश करने का ढंग था? ये तो ईश्वर है, उस समय भाई परम सुंदर लग रहे हैं। स्त्रियों ने तो देखा कि साक्षात मूर्तिमान कामदेव ही आए, इतना सुंदर लग रहे थे। पर कुछ लोग घृणा कर रहे थे, जो कंस के पुरोहित थे, दुष्ट थे, वैसे जी कहां से ऐसे फालतू लोग आ गए, इनको कोई रोका नहीं उधर। साधारण मनुष्य बुद्धि करते थे वे। कंस के साथ रहने से चित्त बिल्कुल अपराधी हो गया था, दूषित हो गया था, इसीलिए वे कृष्ण बलराम को नहीं पहचान पाए। तो आज द्विज संस्कार कराया जा रहा है, जथावत का अर्थ जथा विधि, जो विधि नियम शास्त्र में है उस तरह से कराए। द्विजत्व आपादक संस्कारण उपनयनम, इस अवसर पर श्री वसुदेव जी ने दक्षिणा दिया ब्राह्मणों को, तेभ्यो मतलब गर्गाचार्य जी को और जो ब्राह्मण करा रहे थे, और कई ब्राह्मण जुटे थे, कई वेदियां बना करके क्या क्या नियम यज्ञ करना, तो उन सबको दक्षिणा दिए। दक्षिणा क्या दिए? गाव, अथवा दक्षिणा अलग दिए, गाय अलग से, अथवा गायें ही दक्षिणा में दिए, इसका यह अर्थ है। तेभ्यो अदात दक्षिणा गाव रूपमाला स्वलंकृता, दक्षिणा में गौएं दान दिए, जिन्हें सोने की मालाएं पहनाई गई थी, गौओं का बड़ा श्रृंगार किया गया था रेशमी वस्त्र से, कई प्रकार से, और स्वलंकृतेभ्य और ब्राह्मणों का भी अलंकार किया गया, वो भी बड़े सजे थे, सुंदर थे, उनका अलंकार करके और उनको संपूज्य, उनकी पूजा करके, आदर करके वसुदेव जी ने गायें गौओं का दान दिया। सभी गौएं सवत्साह, नई नई अभी बच्चा देती सब, इसका अर्थ यह है कि नया बच्चा दिए तो ऐसा मतलब नहीं कि दो बार गाय और करिया भैंस दूसरिया, अभी प्रथम बार ही बच्चा दिया। सब अच्छा छम मालिनी रूपमाला है और छौम मालिनी, छौम है रेशमी वस्त्र को कहा जा रहा है, वस्त्र की धागा की बनी हुई मालाएं भी पहनाई गई थी। धागा जैसे जगन्नाथ जी का प्रसाद मिलता है नृसिंह भगवान का, इस कान में भक्त लोग धारण करते हैं ना, धागा की माला, धागा की माला समझते हैं ना। और सोने की माला और कई प्रकार से गौओं का श्रृंगार हुआ था, बछड़ा के साथ थे, बहुत अच्छे थे, वे दक्षिणा में दी गई। अथवा श्रीपा सनातन गोस्वामी कहते हैं दक्षिणा दिए और गौएं दिए, तो गौओं को दक्षिणा में नहीं रखा गया। दक्षिणा मतलब नगद कैश सोने की मुद्राएं दिए, आजकल के ब्राह्मणों को कुछ भी दक्षिणा दीजिए जब तक पैसा नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं। ब्राह्मण या वैष्णव जो भी हैं, इसलिए दक्षिणा को अलग कह रहे हैं सनातन गोस्वामी, दक्षिणा दिए और गौएं दिए। और गौएं दिए तो ये अपने पुत्र के उपनयन संस्कार कराने के उपलक्ष्य में सब गौएं दिए। इसके अलावा 10,000 गौ दान का जो संकल्प किए थे कृष्ण का जन्म होने पर मथुरा में, वह भी दिए। या कृष्ण राम जन्मर्क्षे मनोदत्ता महामति ताश्चा ददात अनुस्मृत्य कंसेन धर्मतो हृता। जब वसुदेव जी कंस के कारागृह में थे और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ जन्माष्टमी के दिन, तो कृष्ण जन्म के उपलक्ष में इतना सुख हुआ, इतना आनंद हुआ कि उन्होंने संकल्प कर लिया मन में 10,000 गायों का दान दूंगा। तो गायें उनकी थी, अलग अलग चरती थी वनों में, गौशाला थी, लेकिन गौशाला में ही केवल नहीं रहती थी। उन्होंने सोचा था कि इन गौओं को दान दूंगा, इनको दूंगा, लेकिन जब जादवों को लूटने लगा कंस, तो उसने वसुदेव जी की गौओं को भी लूट लिया, लुटवाया सारा गाय ले लो। तो उसी को श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कंसेन अधर्म तो हृता, कंस ने अन्याय से पाप से हर लिया था, उसे कोई हक नहीं था वसुदेव जी की गायों को हरने का, लेकिन हकवा लिया था, अपने दल में मिला लिया था। अब जब कंस का वध हो गया तो ये गौएं दी गई दान में, क्या वही गौएं हैं यहां पर एक प्रश्न उठता है कि जिन गौओं का वे संकल्प किए थे उन्हीं को दिए नहीं, मतलब 10,000 संख्या में दिए, अब वे गौएं तो छूट ही गई थी, अब कंस के मारे जाने के बाद तो सब कुछ जिसका जो धन था वो भगवान ने उसको निश्चित कर दिया, और वसुदेव जी का धन तो भगवान का धन था, वो सब देखा गया है, रिकॉर्ड देखा गया कि इधर क्या लूटा है, किसकी किसका धन, किसका घर, इस तरह। तो मनोदत्ता जो मन में दान दी गई थी गौ, उनको ब्राह्मणों को दान दिए, ऐसा नहीं कि इस फेस्टिवल पर बस दान दे दिए और मान लिया जाएगा कि दान हो गया, ये तो अलग दान। पहले के समय में लोग गौओं का बहुत दान करते थे और गौओं को चरने के लिए पर्याप्त गोचर भूमि रहती थी, पर्याप्त। आज तो एक गाय किसी को कोई दान करने चले तो लेने वाला कहेगा कि इसके जीवन भर भूसा भी दीजिए, लेने वाले को चराना वराना है नहीं, कहां चरावे और कहां बांधे गाय को, फ्लैट में रहने वाला व्यक्ति गाय कहां बांधेगा। ये सब अनुभवहीन मनुष्यों की सभ्यता की पहचान है। कोई परम उपयोगी गौ जैसे पशु को रखने का कोई प्रबंध नहीं। पहले लोग अपनी अपनी गायें रखते थे, प्रचुर गौएं रहती थी, और इसीलिए समाज बहुत सुखी रहता था, गो दुग्ध पी करके, घी खा करके, और कई तरह से गाय के घी और दूध से प्रोडक्शन होता है। आपने प्रायः पढ़ा है शास्त्रों में श्रीमद् भागवतम में, कोई अतिथि आया तो अमुक व्यक्ति गोदान दिया, गोदान दिया तो गोदान दिया। कभी कभी शंका होती है किसी को पूछे कि ब्राह्मण इतने गाय लेकर क्या करेंगे, तो गाय लेकर क्या वे अपने घर में रखते थे, चरने के लिए फ्री था, सब जगह चरती थी, कभी कभी घर में बांधते थे। इस पर कीड़े घूमते रहते हैं। अच्छा, तो वसुदेव जी ने गौ दान दिया तो उपनयन संस्कार में दान दिए अपने पुत्रों के अभ्युदय के लिए, वो अलग, और मनोदत्ता मन में जिन्होंने संकल्प किया था दिया था, उन गौओं को भी दिया अथवा उतनी ही गौओं को दिया, ये अर्थ है अलग। क्योंकि महामती वसुदेव जी महामती हैं, इनकी मति महती है, बहुत बड़ी मती। तो किन गौओं को 10,000 संकल्प किए थे, उन गौओं को एकदम जानते थे कि ये गौएं, इतना काउंट रखना, इतना हिसाब रखना, इसलिए इनको महामती कहा गया। अच्छा, महामती का यहां अर्थ है जिसका मन बहुत उदार है, दान देने के लिए उत्सुक है, ऐसे श्री वसुदेव जी अपने पुत्रों के उपनयन संस्कार में दान दिए। और कृष्ण राम जन्मर्क्ष श्री बलराम जी का जब जन्म हुआ था, यह खुशखबरी वसुदेव जी ने सुना था, तो उस समय भी बलराम जी के जन्म के समय भी गाय दान दिए थे। वो यह बड़े नहीं है कि कितना दान दिए थे, 5,000 दिए कि 7,000 कि 10,000, भगवान कृष्ण के लिए 10,000 संकल्प किए, और श्री बलराम जी के लिए भी मनोदत्ता तो 10,000 ही दिए होंगे लगभग, तो वो सब दान दिए। तो महामती का अर्थ कहता है कि वसुदेव जी जन्म के समय दान दिए थे, जन्म नक्षत्र में, तो लगता है कि कृष्ण बलराम के जन्म नक्षत्र में ही दान दिए। वो नक्षत्र कई बार आते रहते हैं दिन में, तो जिस नक्षत्र में दान दिए थे उसी नक्षत्र में गौ में सब दिए। ततश्च लब्ध संस्कार द्विजत्वं प्राप्य सुव्रतौ गर्गाद् यदुकुलाचार्याद् गायत्रं व्रतमास्थितौ। तो इसके बाद लब्ध संस्कार दोनों बच्चों का उपनयन संस्कार हुआ, बहुत सुंदर श्रीकृष्ण और बलराम है, लेकिन उस समय उनका केश मुड़ा गया, ब्रह्मचारी बने, बहुत सुंदर लग रहे थे। तो अब एक गायत्रम व्रत में अस्थित, गायत्रम व्रत का अर्थ होता है ब्रह्मचर्य व्रत। भगवान की अद्भुत लीलाएं हैं, ब्रज में सहस्रों कोटि गोपियों के साथ विहार करते थे, और मथुरा में ब्रह्मचारी वैसे कभी भी पूर्ण ब्रह्मचारी हैं। वृंदावन में लगता है कि यह एक कामुक लड़का है, लड़कियों के पीछे है, लेकिन भगवान भगवान है, काम का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। पर विचित्र लीला है, यहां ब्रह्मचर्य व्रत के प्रारंभ किए और ऐसे देखने में लगता है कि ब्रज में कोई ब्रह्मचारी नहीं है, लंपट है, चोर जार शिखामणि, चोर और लंपटों में, स्त्री लंपटों में सबसे सिरमौर, चोर जार शिखामणि कहे थे भगवान को, चोर एक नंबर के, माखन दही आदि तो चुराते थे, कपड़ा भी चुराए, तो सबका मन चुराते ही रहते थे और अनेक जन्म जित पाप चौरम और अनेक जन्मों में किए गए पाप के फल को भी चुरा लेते थे, भोगना नहीं पड़ता। एक विचित्र लीला है कि ब्रज में भगवान ऐसे कोई ब्रह्मचर्य पालन नियम नहीं किए, क्या जरूरत है उनको ब्रह्मचर्य रहने की जरूरत नहीं है, उनका शरीर चिन्मय है, उस चिन्मय शरीर में वीर्य नाम की कोई चीज नहीं है, न हड्डी है न चाम है न रक्त है न कुछ नहीं है, उसमें ब्रह्मचर्य पालन की क्या जरूरत है, वे अखंड ब्रह्मचारी। पर लोक शिक्षण के लिए भगवान स्वीकार किए, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि उपनयन संस्कार हो उसका और उसे वेद पढ़ने का अवसर मिले, वेद को पढ़ ले, क्योंकि वेद शास्त्र ही जीवन भर उसका श्रेय करते हैं, यह आवश्यक है। इसीलिए वेद शास्त्र पढ़ने में लड़कों को 20 वर्ष लग जाता था, 5 वर्ष की अवस्था में चालू करते थे पढ़ना और 25 वर्ष तक पढ़ते रहते थे गुरु के पास रहकर, इतना आवश्यक है वेद शास्त्र पढ़ना। अब बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो गया मनुष्यों का, इन बच्चों को अब वेद शास्त्र क्या कंप्यूटर शास्त्र और छोटे क्या कंडम चीज पढ़ाते हैं। जितनी नास्तिकता भर जाए उनके मन में भोगों में, और ब्रह्मचर्य व्रत का तो कोई सवाल ही नहीं है, किसी भी स्कूल में कॉलेज में ब्रह्मचर्य व्रत नहीं सिखाया जाता, सिखाने वाले खुद ही ब्रह्मचारी नहीं है, कुछ भी नहीं, शून्य हो गया संसार वास्तव में। इन बच्चों को भोग भोगने की कला सिखाई जाती है लेकिन ब्रह्मचारी रहने की कला, नियम पालन करने की, ज्यादा से ज्यादा कभी अगर सिखाते होंगे बच्चों को तो स्नान करने को कहते होंगे, स्नान करके आओ, वो भी शायद नहीं कहते होंगे, क्या को मोजा पहना है, टाई बांधा है, बस्ता लिया है, नहा करके आया कि ऐसे आया क्या पता है, और गुरुओं को क्या जरूरत है कि नहा करके आवे, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब व्याकरण पढ़ाते थे नवद्वीप में तो एक दिन कई विद्यार्थी बिना तिलक किए, तिलक बिना किए चले गए, नहा करके गए थे लेकिन तिलक नहीं किए, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने पाठशाला उस दिन बंद कर दिया, कहा कि जाकर के तिलक करो, तिलक करके आओ, बिना तिलक के यह ललाट श्मशान होता है। धन्य है वे लोग, वो मनुष्य धन्य है जो गोपी चंदन का तिलक रोज धारण करता रहे, गोपीजनों का श्री देह है, श्री अंग है जो गल गया, मिट्टी बन गया, तो उसको आज तक वैष्णव लोग बड़े प्रेम से धारण करते हैं और इस तिलक बना करके फिर उसमें भगवान के श्री मूर्तियों की प्रतिष्ठा करते हैं। श्री केशवाय नमः, श्री नारायणाय नमः, श्री माधवाय नमः, श्री गोविंदाय नमः, श्री विष्णवे नमः, हरे कृष्ण, श्री विष्णवे नमः, श्री मधुसूदनाय नमः, श्री त्रिविक्रमाय नमः, श्री वामनाय नमः, श्री श्रीधराय नमः, श्री हृषिकेशाय नमः, श्री पद्मनाभाय नमः, श्री दामोदराय नमः। क्या पवित्र जीवन है अगर तिलक धारण करके फिर भगवान के नाम बोला जाए तो उस व्यक्ति का क्यों नहीं मंगल होगा। भगवान को अपने देह पर 12 जगह पर बैठा करके इस तरह जो जीवन व्यतीत करे, सवेरे सवेरे भगवान को बैठा, दोपहर को स्नान करता, उस समय भी शाम को भी, ये जीवन है। इस तिलक के बिना तो वैसे ही ये शरीर जड़ है लेकिन तिलक धारण करने से यह चिन्मय बनता है, भगवान विराजते हैं इस देह पर। तो तिलक धारण करने को विद्यार्थियों को, बच्चों को कोई भी शिक्षक नहीं कहता होगा ना, कभी नहीं। क्योंकि तिलक करके चले गए तो कहता होगा ये क्या कर लिए, बाप रे, भारी आश्चर्य हो गया क्या तिलक किया और ये कंठी कैसे बांध ली, कितना समाज बदल गया। ये मानसिकता हो गई आज के समाज में, क्या कल्याण करेंगे बच्चों का। तो ये द्विजत्व संस्कार प्राप्त करके द्विज हो गए, लब्ध संस्कार सुव्रतौ, सुंदर व्रत का आचरण किए, सब नियम पालन करना सर्वदा। जदुकुल के आचार्य गर्गाचार्य ये सब शिक्षा दे रहे थे दोनों बच्चों को। जब जदुकुल के आचार्य हैं तो श्री कृष्ण के भी गुरु हैं आचार्य। इस तरह ब्रह्मचर्य व्रत में रहने लगे। प्रभवौ सर्व विद्यानां सर्वज्ञौ जगदीश्वरौ नान्य सिद्धा मल ज्ञानम गुह मानव नरे हितय। तो श्रीपाद गर्गाचार्य के यहां शास्त्रों का अध्ययन करते थे। जब संस्कार प्राप्त कर ले उपनयन संस्कार, तो पढ़ाई चालू हुई घर पर पहले गर्गाचार्य के यहां। गर्गाचार्य से महाविद्वत के श्रीमुख से सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, क्यों भगवान पढ़ रहे थे, क्यों वे नर लीला कर रहे हैं। तो नरे हित ही मनुष्य चेष्टाओं द्वारा अपने नित्य सिद्ध ज्ञान को गुह मानव छिपा रहे थे, छिपाए थे। जैसे हमको ज्ञान नहीं है, अब तक गाय चराते रहे, अब पढ़ेंगे, अब सीखेंगे, ये है नर इहित, नरलीला। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी सो प्रभु पढ़े यह अद्भुत भारी अचरज भारी। तुलसीदास जी कहते जिनके सहज श्वास से ही चारों वेद प्रकट हुए हैं, सहज ज्ञान जो ज्ञानमय ही है और अन्य सिद्ध ज्ञान नहीं, अपने आप स्वतः सिद्ध, वे प्रभु पढ़े यह बहुत भारी आश्चर्य है। भगवान श्री राम के पढ़ने गए तो कौआ क ख सब स्लेट पर चिन्ह पारना लगाना, तो पहले पहले पता ही नहीं लगता है कि इनको ज्ञान है कुछ, क्यों ऐसे कर रहे हैं। क्योंकि मनुष्य को ज्ञान ग्रहण कराने के लिए नन्य सिद्धा मतलब ज्ञानम गुह मानव नरे, जो मनुष्य लीला द्वारा छिपाए हैं ऐसे तो समस्त विद्याओं के यही प्रभाव हैं दोनों, सारी विद्याएं इनसे निकली हैं, सर्व विद्या के प्रवर्तक हैं और सर्वज्ञ विद्याओं के प्रवर्तक हैं और सब कुछ जानते हैं। जगदीश्वर जगत के नियामक हैं, समस्त जीवों के नियामक हैं, फिर भी अपने अमल ज्ञान को, नित्य सिद्ध ज्ञान को छिपाए थे नर लीलाओं द्वारा, नर लीलाओं से छिपाए रहते हैं। अज्ञ जैसी लीला करना, जैसे कहीं किसी को से कुछ पूछना किसी विषय में, ये यह नर लीला। गुह मानव का अर्थ है प्रच्छाद्यंत, तो अब जब पढ़ाई करना हुआ कुछ नियम और शास्त्र का पाठ करना, ये तो गर्गाचार्य जी ने सिखाया सब अक्षर ज्ञान व्याकरण और शास्त्र पढ़ना। लेकिन इसके बाद वे दोनों भाइयों को अवंतिका ले गए, ये भेंज ले गए होंगे पहले रखने के लिए संदीपनी गुरु के आश्रम पढ़ने के लिए। यहां पर श्री हरिश्री जी कहते हैं क्या जरूरत थी गर्गाचार्य के पास से दूर ले जाने की। अथो गुरुकुले वासम इच्छन्तौ उपजगमतुः काश्यम संदीपनिम नाम ह्यवंती पुरवासिनम। गुरुकुले वासम इच्छन्तौ अवंतीपुरवासिनम काश्यम संदीपनिम नाम उपजगमतुः। संदीपनी मुनि के पास गए। मथुरा से उज्जैन काफी दूर है ना। तो वहां गए तो गुरुकुल में क्यों गए भगवान, पहले इसका संभावित प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। गुरुकुल में क्यों गए, यद्यप्यात्मैव गुरुस्तथापि शरणं विधेयमेव गुरुः विधेयः गुरु सज्जन सच्चरित पथ प्रवर्तकेन व्यबोधि विभुना इदं विभुनेदं। यद्यपि शास्त्र भी कहता है कि कोई किसी के गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, शास्त्र कहता है आत्मैव गुरुरात्मनः, व्यक्ति स्वयं ही अपना गुरु है। इसको हरिश्री जी कोट कर रहे हैं भागवत से या गीता से, आत्मैव गुरुरात्मनः। एकादश स्कंद में भगवान ने बात कही है व्यक्ति अपने से अपना गुरु है। क्या खा करके आया है, इसको क्या हो गया है, इस तरह से मरे जैसे हो जाना। सचेत होकर के सुनना चाहिए। तो अपने से व्यक्ति अपना गुरु है। यदि यद्यपि आत्मा एवं गुरु तथापि शरणम विधेय एवं गुरु, ठीक है यह बात है कि अपना हित अहित व्यक्ति स्वयं कर सकता है, अपने से अपना व्यक्ति गुरु है। ये मान लीजिए ये बात सत्य है, शास्त्र कहता है तो झूठा नहीं है, व्यक्ति वास्तव में अपने से अपना गुरु है। क्योंकि फिर भी बहुत कुछ श्रेय प्राप्त करने के लिए गुरु होना ही चाहिए। भगवान ने शिक्षा देने के लिए गुरु ग्रहण किए। सज्जन सच्चरित पथ प्रवर्तकेन, सज्जनों के सतपथ का प्रवर्तन करने वाले श्री भगवान गुरु स्वीकार कर रहे हैं। पथ प्रवर्तकेन, सज्जन पथ प्रवर्तकेन, भगवान इस शिक्षा दे रहे हैं। अन्यथा भगवान को क्या गुरु की जरूरत, कोई आवश्यकता नहीं है गुरु की। सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, लेकिन सज्जन को चाहिए कि इस संसार में गुरु अवश्य करे। ये रास्ता दिखाने के लिए श्री भगवान ने गुरुकुल में वास किया, गुरु स्वीकार किया। सर्वविदापि प्रभुणा निगमागम कारिणा अप्यहो हरिणा, जो सर्ववेत्ता हैं, निगम आगम सबके रचयिता हैं, वे हरि के द्वारा गुरुगृह गमन न ध्वनितम गुरु सत्य सदैव नयत्यम। वे जाकर के गुरु की शरण में रहे उज्जैन में अवंतिका में। इसके द्वारा भगवान सिखा रहे हैं कि गुरु की उपशक्ति शरणागति बहुत आवश्यक है। स्वयं भगवान जो सर्वविदा सर्वज्ञ हैं, निगमागम कारिणा, यही निगम आगम समस्त शास्त्रों के करने वाले हैं, रचयिता हैं, स्वयं हरि श्री भगवान फिर भी गुरुगृह गमना ध्वनितम, गुरु गृह गमन द्वारा उन्होंने ध्वनित किया, संकेत किया, गुरु सत्य सदैव नैयत्यम, गुरु करना चाहिए, नियम ही है यह, गुरु करना ही चाहिए यह सिखाने के लिए। और ठीक है, गुरु करना था तो गुरु तो गर्गाचार्य थे ही, तो वहीं पर क्यों नहीं पढ़े, उज्जैन क्यों गए, इतना दूर जाने की क्या जरूरत थी। इस पर हरिश्वर जी लिखते हैं, विद्यावाप्तिरभीष्टदा भुवि गुरोः शुश्रूषै वेदिता सारनिर्व्याजमखण्डिता हि घटते अन्यत्रैव न स्वाश्रमे इति अन्यान अनुबोधयन प्रभुरगाद अन्यत्र मन्ने न चेत् गर्गोऽपि प्रथितः कृतो निजकुलाचार्यो न कस्माद् गुरु। विद्या अवाप्ति रभीष्टदा भुवि, इस पृथ्वी पर विद्या प्राप्त होती है जो अभीष्ट देती है, वह गुरु की सेवा द्वारा ही, ऐसा शास्त्र कहता है। विद्या आती है, ज्ञान आता है गुरु शुश्रूषया एव इति ईरिता, लेकिन यह विद्या निर्व्याज अखंडिता ही घटते, बीच में कोई बाधा न पड़े और अखंड रात दिन जब विद्या ग्रहण की जाती है, ज्ञान ग्रहण किया जाता है तब होता है, बीच में कोई ब्याज बहाना नहीं होना चाहिए कि बीच में 10 दिन के लिए गए तो अब ब्रह्मचारी है लड़का है चला गया, 10 दिन भाई के विवाह में घूम रहा है, पढ़ाई चौपट हुई, तो निर्व्याज और अखंडित विद्या प्राप्ति होती है जब व्यक्ति अन्यत्र रहता है, न स्वाश्रम में, अपने घर पर नहीं। अपने घर पर तो अनेक घर के संबंधी बातें होती है, चिंता होती है, वहां क्या पढ़ेगा, इसलिए अन्यत्र ही जाना चाहिए और अन्यत्र विद्या प्राप्त करनी चाहिए, अपने घर पर नहीं। तो यही सिखाने के लिए श्री भगवान अवंतिका गए, नहीं तो अपने घर पर ही मथुरा में ही सबसे बड़े आचार्य रह रहे थे, तो वहीं क्यों नहीं विद्या अध्ययन किए गर्गाचार्य से, जो कि बहुत स्नेह से कराने वाले थे। घर पर पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई अखंडित होती है, निर्व्याज होती है दूर रहने पर। कितनी मार्मिक बात बता रहे हैं ये, तो भगवान इसीलिए शिक्षा देने के लिए गए, दे रहे हैं शिक्षा अपने आचरण से, इति अनुबोध है। अच्छा, अवंतिका ही क्यों गए, और भी बहुत से स्थान हैं जहां विद्या प्राप्त हो सकती है। अवन का अर्थ होता है रक्षण, और अवंति माने रक्षा करने वाली। भगवान ने सोचा कि मैं विश्व की रक्षा करने के लिए अवतार लिया हूं, और ये विद्या भी रक्षिका होती है, अनेक दुर्गतियों से विपत्तियों से रक्षा करती है, तो अवंतिका बहुत अच्छा, ये रक्षा करने वाली नगरी है, अवन करने वाली नगरी है। शायद भगवान यही सोच करके अवंतिका गए, इसका स्वभाव मिलता जुलता। और कितने नगर हैं, लेकिन ऐसा नाम कि रक्षा करने वाली नगरी अवंतिका, तो अवंतिका ही है ना, वहीं पर विद्या अध्ययन करना भगवान ने उचित समझा, उसी नगरी में। बाद में उस नगरी का नाम हुआ उज्जैनी, उज्जैनी, उज्जैनी जो उत्कृष्ट विजय दे, विजय दे, उसी को संक्षेप में अपभ्रंश में उज्जैन उज्जैन कहते हैं, उज्जैनी। और महाराज विक्रमादित्य के समय में इसका उज्जैनी नाम हुआ, विजय देने वाली, जय देने वाली नगरी। तो जो जय देने वाली नगरी है और रक्षक करने वाली, क्यों नहीं वहीं जाकर पढ़ा जाए। भगवान ने सोचा हमें रक्षा करनी है, हमारे अवतार का प्रयोजन है रक्षा करना, तो यह नगरी भी हमारे इस कार्य में सहायक होगी। तो शायद भगवान इसी से उज्जैन गए, अवंतिका गए। वहां जाकर के किस तरह श्री कृष्ण बलराम अध्ययन कर रहे हैं, उज्जैन में कहां गए, काश्यम संदीपनिम नाम। काश्यम का एक अर्थ है कश्यप गोत्र के ब्राह्मण थे वहां परम विद्वान। अरे भगवान का गुरु जो बनेंगे उनके विषय में अब क्या कहना कि परम विद्वान थे ये थे। काश्यम अथवा काशी के थे, काश्यम काशी विद्वानों की गढ़ है, काशी में इनका जन्म हुआ था। काशी के थे लेकिन अवंतीपुर वासिनम, रहते थे उज्जैन में। अब वो भी पता नहीं किस कारण से अपनी पत्नी के साथ वहां वास कर रहे थे, उज्जैन में अवंतिका में वास कर रहे थे। अवंतीपुर वासिनम पर काश्यम बनारसी विद्वान थे, काशी के पंडित थे। तो भगवान वहां गए, जथोपसाद्य जो विधि थी गुरु के पास जाने की, उनसे मिलने की, कैसे मिलें कैसे प्रणाम, तो गुरुपसाद्य जथोपसाद्य शास्त्र विधि के अनुसार दोनों भाई मिले गुरु से, कुछ पाणी आदि हो करके, जो नियम है जो विद्यार्थी गुरु के पास जाए तो हाथ में कुश रखे, पैंती लगाकर, कोई संग्रह नहीं। ये नहीं अब उसे तो कोई जरूरत भी नहीं थी कि अपने साथ कुछ पैसा ले जाए, कुछ नहीं, एक पैसा भी नहीं। गुरु के लिए कुछ हो सकता है शुरू में लिए होंगे मथुरा से कुछ अनाज या बाजार से सब्जी खरीद करके ले जाए, जो भी हो गुरु के पास जथोपसाद जो विधि है उसके अनुसार गए। जथावत अर्थात कुछ पाणित्व आदि आदि श्रुति उक्त प्रकारेण उपसाद्य गुरुम प्राप्य निकट गए। दांतव दोनों भाई पूर्ण जितेंद्रिय थे, जितेंद्रिय चंचल स्वभाव के नहीं, जब पढ़ाई के लिए गए हैं तो सब प्रकार से आंख से कैसे देखना चाहिए, इसमें ही इधर उधर देखना, बात सुनना, चंचलता करना और खेलने कूदने में रुचि रखना, वैसे ही फिर इसके पहले तो दोनों खूब नाच गा करके आए हैं वृंदावन से। दांत का कोई प्रश्न ही नहीं है कि कहीं देखना, किसी को देख करके हंसना, खेलना, गड़ना, जो भी है गाचरण, लेकिन यहां पूर्ण दांत, दांत का अर्थ बाह्य इंद्रियों पर निग्रह। दांत पहला गुण बता रहे हैं, दांतव और गुरु वृत्तिम अनिंदिता, अनिंदिता वृत्तिम गुरु के साथ है अनिंद आचरण, वृत्ति माने वर्तनम, अनिंद कभी कोई शिकायत नहीं आई संदीपनी गुरु महाराज के पास, कभी कोई शिकायत नहीं। अनिंदिता वृत्ति मतलब प्रशंसा युक्त वृत्ति, समय से जब स्नान करना है, पढ़ने के लिए बैठना है, गुरु के आश्रम को साफ रखना है, सब कुछ, कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि कोई भी शिकायत हो कि ये ठीक नहीं किया। अनिंदिता वृत्ति, इस वृत्ति में स्थित हो करके और अध्ययन कर रहे थे दोनों भाई। ग्राह्यन्तौ उपेतस्म भक्त्या देवं युवाद्रितौ। गुरु की कैसी सेवा करते थे, किस भाव से रहते थे, देवम इव साक्षात भगवान मानकर, देवकार होता है श्री विष्णु, भगवान के समान मान करके उनकी सेवा करते थे और उनसे पढ़ते थे। हरीश्वरी जी कहते हैं कि जो उपनिषद कहता है जस देवे परा भक्ति जथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मन। जो व्यक्ति भगवान में परम भक्ति रखता है श्रीकृष्ण में, और जैसी परम भक्ति श्रीकृष्ण में है वैसी ही भक्ति अपने गुरु में रखता है, तो उसके लिए शास्त्र अपने आप अपना सारा अर्थ खोल देते हैं। तस्य ते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मन, अपने आप प्रकट कर देते। तो श्रीकृष्ण बलराम अपने गुरु को सांदीपनी जी को साक्षात परमात्मा भगवान जैसा मानते थे, आदर करते। देवम इव आदृतौ, तो विद्या पढ़ रहे थे किस लिए, ग्राह्यन्तौ ग्रहण करा रहे थे। क्या ग्रहण करा रहे थे, लोक को अन्यों को शिक्षा दे रहे थे कि इस तरह से गुरु करना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए और इस तरह विद्या अर्जित करनी चाहिए और विद्या अर्जन करना चाहिए। ग्राह्यन्तौ, इस श्लोक में ये शब्द है ग्राह्यन्तौ, ग्रहण कर रहे थे, यह नहीं कह रहे सुखदेव गोस्वामी, उनको क्या जरूरत ग्रहण करने की, वो तो सब जानते ही हैं। लेकिन ग्राह्यन्तौ, दूसरे मनुष्य भगवान के आचरण से इस बात को सीखें और गुरुकुल में गुरु के पास जाकर के वेद शास्त्र का अध्ययन करें सीखें, ये करा रहे थे। अपनी आचारी धर्म जीवे रे सिखाए, ए हरि बोल, वहां कौन बात कर रहा है बैठे बैठे, अजीब अजीब आदमी यहां आ जाते हैं खड़े हो जाते हैं। अरे वो बरामदे में बैठे हुए लास्ट में वो नीचे खड़ा है और एक बैठा है, क्या बात कर रहे हो, वहां क्या बात कर रहे हो, तुम लोग कथा सुनने आए हो कि डिस्टर्ब करने आए हो, बैठ करके कभी खड़ा होकर के बैठ करके बात कर रहे हो, शर्म नहीं लगती है इस तरह से बोलना, बैठो बैठो कहीं कथा में बैठो, खड़ा मत रहो। अभी सुन रहे हैं ना भगवान किस तरह से गुरुकुल में वास कर रहे हैं, कम से कम हमारी दृष्टि के सामने मत बात करो, जहां अलग करना हो करो। तो भगवान इस तरह से ग्राह्यन्तौ मनुष्यों को शिक्षा दे रहे हैं, यही अवतार का प्रयोजन है। मनुष्य शरीर अपना प्रकट करके मनुष्य को कैसे गुरु बनाना चाहिए, कैसे शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, इसको शिक्षा दे रहे हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं ग्राह्यन्तौ, इस प्रकार के आचरण रह करके ग्रहण करा रहे हैं और अपने गुरु को भगवान जैसा मानते थे, भक्त्या भक्ति से आदर से, ऐसा नहीं केवल दिखावा के लिए, भक्त्या वास्तव में उनका अनुराग था गुरु के प्रति, अलग दिखा रहे उनकी सेवा कर रहे थे। हम जो यहां पर कथा कह रहे हैं वास्तव में भगवान के चरित्र की कथा हो रही है, यह कोई आयोजन मात्र नहीं है, इसलिए मुझे सहन नहीं होता है कोई अखंड बात करता रहे इधर उधर, नहीं सुनना है तो परोक्ष में जाकर के बैठ करके रहे व्यक्ति, लेकिन बात न करे इधर। तो हम आस्वादन कर रहे हैं, हम अपने सुख के लिए ये कथा कह रहे हैं, तो हमें डिस्टर्ब होता है तो सहन नहीं होता है। तो क्योंकि एक एक अक्षर को, एक एक श्लोक को, टीकाओं को मैंने लिखा है, मैंने आस्वादन किया है, तो उसको मैं पुनः अपने मन में धारण करना चाहता हूं, वाणी से वैष्णव की सेवा कर रहा हूं, तो यह परम पवित्र कार्य कर रहा हूं, अपने जीवन का जो सबसे महान कार्य है वो भगवान की सेवा है डायरेक्ट। तो श्री भगवान भाई बलराम जी के साथ जो संदीपनी गुरु के पास गए हैं, किस तरह से गए, कैसे रह रहे हैं और किस प्रकार गुरु के प्रति क्या भाव है, तो भक्त्या देवम इव आदृतौ। इसी पर हरिश्री जी कहते हैं कि देववत पूजयितैनम सर्व विद्यार्थ शोभिना तस्यैते कथिता यर्था श्रुति अर्थोयम स्फुटीकृत। तो यहां पर श्रुति का वो अर्थ क्लियर किया जा रहा है, जो व्यक्ति भगवान के में पराभक्ति और गुरु में वैसे ही भक्ति रखता है, उसको वेद शास्त्र अपने आप ही अपना अर्थ खोल देते हैं। ज्ञान नापी गुरुर विद्या ग्रहणादिति बोधितम पत्र पुष्प फलाकांक्षी श्रीमान नत्यस्मि भक्तितः। कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कुछ भी हो, शास्त्रों का पढ़ा हुआ हो, बड़ा अनुभव हो, ज्ञानी हो, लेकिन उसको भी चाहिए कि गुरु से विद्या ग्रहण करे। ये भगवान शिक्षा दिए, स्वयं अपने आचरण से भी शिक्षा देते हैं। गीता में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति को हृतम स्नाने प्रयतात्मना। हरिश्री जी कहते हैं स्वयं श्रीमान भी, श्रीमान मतलब श्री के, श्री से जो युक्त हैं, समस्त ऐश्वर्य वैभव धन से युक्त हैं, वे भी पत्र पुष्प फलाकांक्षी होते हैं। श्रीपति समस्त धन के सम्राट अधिकारी भगवान ये कहें कि हमको पत्ता दो, हमको फूल दो, हमको पानी दो, पत्र दो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यदि कोई प्रेम से भक्ति से मुझे देता है तो मैं उसे ग्रहण करता हूं, खाता हूं, स्नान। तो श्रीमान होकर के भी, लक्ष्मीपति होकर के भी एक पत्ता पानी और जल फल चाहते हैं। इस श्लोक में बोल रहे हैं तो वास्तव में चाहते हैं ना कि हमको दो, नहीं तो ये हम कहते हैं कोई देता है तो मैं लेता हूं, तो लेने के लिए कोई दे हमको बोल रहे हैं, नहीं लेना होता तो कह देते कि कोई कुछ भी दे मैं नहीं लेता है कि नहीं, क्योंकि मैं पूर्ण हूं, पूर्ण काम हूं, मैं लक्ष्मी का भरतार हूं, मुझे क्या जरूरत है। लेकिन कोई पुत्र पत्र पुष्प फल जल देता है तो मैं उसे लेता हूं, तो भगवान तो आकांक्षी हैं, लेना चाहते। तो जो इतना धनवान है, सारा धन उसका है, धन की अधिकारिणी लक्ष्मी जी जिसकी गृहदासी हैं, चरण सेविका हैं, और वह भी पत्र पुष्प फल का आकांक्षी हो रहा है। इसी तरह से महाविद्वान भी है, सब कुछ जानता है, फिर भी उसको गुरु करना तो जरूरी ही है, गुरु की शरण लेना जरूरी है। अपने उदाहरण से ही भगवान सिखा रहे हैं सब, ग्राह्यंत। तयोर द्विज वरस्तुष्ट शुद्ध भावानुवृत्ति भी प्रोवाच वेदान अखिलान सांगोपनिषदो गुरु। उन दोनों के सेवा से गुरु बहुत प्रसन्न हो गए, कृष्ण बलराम के द्वारा की गई सेवा से बहुत प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के उन्होंने दोनों को प्रोवाच प्रकृष्ट रूप से बोले, अखिलान वेदान समस्त वेदों बोले प्रोवाच, और अंग के सहित और उपनिषदों के सहित, उपनिषद वेदांत भी पढ़ाए और अंग कल्प व्याकरण आदि सब और उपनिषद वेद के अंतिम शीर्ष भाग जिसको वेदांत कहते हैं, फाइनल ज्ञान वेद का जिसमें है निचोड़ है सारांश, उसको वेदांत कहते हैं। वेदों को पढ़ाए, उपनिषदों को पढ़ाए, कल्प आदि को पढ़ाए, क्योंकि शुद्ध भावानुवृत्ति भी शुद्ध भाव से की गई सेवाओं से संदीपनी गुरु परम प्रसन्न थे, तुष्ट थे, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ गुरु हैं, द्विजवराह गुरु अखिलन वेदन प्रवाच बोले। केवल इनको बोलने की ही जरूरत पड़ी, गुरु को भी बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ा, सक्रिय निगद मात्र वे एक बार बोलते जाते थे बस, एक बार सकृत, एक बार के प्रवचन से सब कुछ लोग सीख गए। सरहस्यम धनुर्वेदम धर्मान्याय पथांश तथा चार्मिक्षिकीं विद्याम राजनीतिम च सर्वविधाम। रहस्य के साथ धनुर्वेद, क्षत्रिय हैं तो धनुर्वेद पहले दिया गया। धनुर्वेद का अर्थ है युद्ध करने की विद्या, जो धनुर्वेद भी कहते हैं। युद्ध में मुख्य साधन है धनुष, इसीलिए इसको धनुर्विद्या कहा गया, युद्ध करने की विद्या। सरहस्य, सरहस्य का अर्थ है कि मंत्र और देवता के ध्यान आदि सहित कोई बाण चलाया जाता है तो किस देवता का, उस बाण का अधिपति कौन है। जैसे पाशुपतास्त्र है तो पशुपतिनाथ उस शस्त्र के प्रवर्तक, तो भगवान शिव का ध्यान करके वो बाण चलाया जाता है। अर्जुन को पशुपतास्त्र प्राप्त था लेकिन अर्जुन कभी नहीं चलाया, बड़े भयंकर जो अस्त्र होते हैं उनका कभी अनुसंधान उन्होंने नहीं किया, कभी नहीं चलाया, सामान्य रूप से लड़ते थे, क्योंकि रिजु अर्जुन है सीधा साधा व्यक्ति। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र मिल गया तो असमय में वो चला गया, कोई कंट्रोल नहीं था। अर्जुन कभी नहीं चला, अर्जुन केवल उसके ब्रह्मास्त्र का समन करने के लिए चलाए थे ब्रह्मास्त्र। इतना बड़ा युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में लेकिन कभी उन्होंने कोई भयंकर बाण नहीं चलाया। नारायणास्त्र है तो उसके प्रवर्तक या उसके स्वामी भगवान नारायण है, वो भी अर्जुन ने कभी नहीं चलाया। तो गुरु संदीपनी ने बताया किस अस्त्र के कौन देवता हैं और क्या मंत्र है, मंत्र पढ़ करके देवता का ध्यान करके मंत्र पढ़ करके जो बाण चलाया जाता था, एक बाण हजारों करोड़ों बाण बन सकता था, और जिसको लक्ष्य करके छोड़ा जाता था केवल वही मारा जाता था, दूसरा नहीं मर सकता था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में महाभारत में लिखा गया है कि अर्जुन जब द्रोणाचार्य को देखे तो उनको प्रणाम किए, लेकिन चूंकि युद्ध भूमि में है तो वहां जाकर के अब माला पहना करके चरण छूकर प्रणाम नहीं करना था। विपक्ष में आए थे द्रोणाचार्य कौरवों के तरफ से या भीष्म पितामह, तो उनको प्रणाम किए तो बाण से प्रणाम किए, बाण छोड़े और वे बाण जाकर के गुरु द्रोणाचार्य के चरण के पास लगभग छूते छूते रह गए, चरण में टच नहीं किए। लेकिन यह रीति है कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने पूज्य पुरुषों को प्रणाम करने की विधि, बाण से प्रणाम करने। और वो लोग भी अद्भुत थे, जब युद्ध में सब खड़े थे तो भगवान श्रीकृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को कहा कि गुरुजनों से आशीर्वाद ले लीजिए, आज्ञा ले लीजिए युद्ध के लिए, इनको प्रणाम करके। युधिष्ठिर महाराज चले उतरे भीष्म पितामह को देह करके रथ से, और उस समय उनके साथ उनके भाई भी सब गए, प्रणाम करने के लिए। भगवान भी घोड़ा हाँकना छोड़ करके गए, उनको प्रणाम किए। सबसे पहले भीष्म पितामह की आज्ञा दी। युधिष्ठिर महाराज कहे कि पितामह आपकी आज्ञा चाहता हूं युद्ध करने के लिए। ठीक है बेटा, तुम्हारी विजय हो। दुर्योधन आदि सब सुन रहे थे। भीष्म पितामह आशीर्वाद दिए युधिष्ठिर महाराज को कि विजय प्राप्त करो। लड़ रहे हैं विपक्ष से, विजय प्राप्त हो। तो युधिष्ठिर महाराज भी इतना निश्चल व्यक्ति, वे कहते हैं पितामह आपको इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त है, मैं आपके रहते कैसे विजय प्राप्त कर सकता हूं। तो भीष्म पितामह कहते हैं बेटा, यदि कोई स्त्री मेरे सामने लड़ने के लिए खड़ा हो जाए तो मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा, उस समय कोई वीर मेरा वध कर दे। तो शिखंडी जो इसी जन्म में पहले स्त्री था, उसका नाम क्या था? अम्बा। अम्बा काशी नरेश की पुत्री थी। भीष्म पितामह अपने भाई के चक्कर में पड़े थे कि उसका विवाह हो जाए। विचित्रवीर्य का विवाह हो जाए तो ये बनारस गए हुए थे, तो वहां स्वयंवर चल रहा था। तो काशी नरेश की तीनों लड़कियों का अपहरण कर लिए। तीन थी ना? स्वयंवर में क्षत्रिय थे ही, स्वयंवर हरण कर लिए। तो जो अम्बा आ रही थी रथ पर, उसने बीच में उनसे कहा कि मैंने अपना मन सालों को दे दिया है, मैं सालों को अपना पति मान चुकी हूं, इसलिए आप हमें छोड़ दीजिए। तो भीष्म पितामह उसको कहे ठीक है तुम जाओ। तो दो को लेकर आए, अंबिका और अंबालिका को। तो वो जब साल्व के पास गई, उसने कहा कि मैं आपको अपना पति चुन मान ली हूं, आप हमें स्वीकार कीजिए। तो साल्व ने कहा तुमको तो हस्तिनापुर वाला वो भीष्म छू दिया है, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता, तुम जाओ उसी से विवाह करो। तो बहुत निराश हुई बेचारी, फिर भीष्म पितामह के पास आई और कही कि हमको साल स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आपने मेरा पाणी ग्रहण किया है। रथ पर बैठाने में हाथ पकड़ लिए, तो उसी को अबोल बाध होकर आई, कहते कि आपने हमारा हाथ पकड़ा है इसलिए आप हमारे पति हैं, हमसे विवाह कीजिए। भीष्म पितामह तो आजीवन प्रतिज्ञा कर चुके थे ब्रह्मचारी रहने, उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं कभी नहीं कर सकता, तुम साल्व के पास जाओ। तो कुछ लोगों ने कहा कि भीष्म के गुरु हैं भगवान परशुराम धनुर्वेद के, जाकर के उनसे रिक्वेस्ट करो, वे कह देंगे भीष्म को विवाह करने के लिए। तो गई महेंद्र पर्वत पर जहां भगवान परशुराम जी थे, वो रोई गाई बेचारी स्त्री के हमारा विवाह नहीं हो रहा है, ऐसे हो गया ये हो गया। तो भगवान परशुराम कहे कि ठीक है चलो मैं भीष्म को डांट करके और उसका मैरिज करा दूं। आ गए भीष्म पितामह हस्तिनापुर, भीष्म पितामह को आज्ञा दिए सीधे तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, बेचारी इतना रो रही है कलप रही है इससे तुम्हें विवाह करना है। तो भीष्म पितामह कहे कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते। तो आंधी आ गई, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। तो भगवान परशुराम है तो मेरे साथ तुमको युद्ध करना होगा। दोनों में युद्ध होने लगा, युद्ध चालू हुआ। बहुत देर तक युद्ध हुआ, कोई जीत नहीं रहा था, कोई हार नहीं रहा था। अंत में श्री नारद जी आए और कहे, क्या है आप लोग लड़ रहे हैं बिना मतलब, युद्ध रोक दिए। तो कुछ भी नहीं हुआ, भीष्म से भी विवाह नहीं हुआ, सालों से भी विवाह नहीं हुआ। और जा करके तपस्या करने लगी, भगवान शिव को प्रसन्न करके वर मांगने के लिए कहे, तो इसने वर मांगा कि हमको पुरुष बना दीजिए और मैं भीष्म का वध करूंगी। भीष्म से इतना चिढ़ चुके थे जो रिजेक्ट किए थे, तो वो भगवान शिव की कृपा से अंबा पुरुष बन गए। उसका नाम हुआ शिखंडी। तो शिखंडी को ही आगे किया गया था भीष्म पितामह से युद्ध करो। जब शिखंडी को देखा, वो जानते थे सारा इतिहास कि वह वही अंबा है जो शिखंडी बना हुआ है। जब वो आगे लड़ने के लिए आया, शिखंडी का महारथ, वह महारथी था। गीता के पहला अध्याय में उसका नाम आया। उसको देखते हैं भीष्म पितामह एकदम लड़ना छोड़ दिए। जब लड़ना छोड़ दिए तो उस समय अर्जुन उनको उन पर बाण मारने लगे भगवान के कहने से, और अर्जुन ने धराशायी किया भीष्म पितामह को, तो धनुष वेद पर मैं कहा धनुर्विद्या पर, कि धनुर्विद्या के अधिपति होते हैं, देवता होते हैं और मंत्र होता है, तो उसको रहस्य है कहा गया है। रहस्य के साथ धनुर्वेद सिखाए और धर्म के मार्ग जो महाराज मनु स्मृति में कहा है, जाग्वल्क स्मृति, पराशर स्मृति, सब धर्म ग्रंथ हैं। इन धर्म ग्रंथों को उन्होंने पढ़ाया, न्याय पथान और न्याय पथ मीमांसा आदि को न्याय पथ कहते हैं, और अनुक्षिकी विद्या, तर्क विद्या, ब्रह्म विद्या, इनको सिखाया। और छह प्रकार की राजनीति, इसका वर्णन महाभारत में विस्तार से किया गया। छह अंग कौन कौन है राजनीति के? संधि, समय पर संधि करना, विग्रह, युद्ध करना, यानम, यान कैसा होना चाहिए, हाथी घोड़ा आदि कैसे रखना चाहिए, एक विभाग है यान। जैसे हम लोगों के यहां मिलिट्री विभाग है, तो मिलिट्री के यान है कुछ, मोटर गाड़ियां हैं, जंगल में कैसे जाएंगे, यानम। आसनम, द्वैधम, आश्रयम, भेद डालना, और किसका आश्रय लेना चाहिए राजा को, किसको साथ में रखना चाहिए, यहां तक सब कुछ वर्णन है कि मंत्री कैसा होना चाहिए और कोषाध्यक्ष कैसा होना चाहिए, सचिव कैसा होना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए राजा का, ये सब बातें सिखाई जाती। तो छह प्रकार की राजनीति गुरु संदीपनि मुनि ने सिखाया। सर्वम नरवरा श्रेष्ठ सर्व विद्या प्रवर्तक सक्री निगद मात्रेण तौसम जी ग्रहतुर निरप। सक्री निगद मात्रेण, श्रीकृष्ण बलराम नरवर श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ हैं। नराकार हैं, परब्रह्म हैं दोनों, लेकिन सबसे श्रेष्ठ नरवर कह रहे। सर्व विद्या प्रवर्तक, समस्त विद्याओं के प्रवर्तक हैं, प्रणेता हैं। लेकिन ऐसा होते हुए भी वे सीख रहे थे, पढ़ रहे थे। सक्री निगद मात्र, गुरु संदीपनी के द्वारा एक बार केवल उच्चारित होते थे श्लोक, श्लोक अश्लोक केवल, और अश्लोकों की व्याख्या भी नहीं, केवल एक बार उच्चारण। और वे दोनों इतने समर्थ हैं कि हे महाराज परीक्षित, वे जन जग गृहतु ग्रहण कर लेते थे। एक बार के उच्चारण मात्र से। अहो रात्र चतुष्षष्ट्या, कितना दिन पर है? 64 दिन। चतुष्षष्ठी, षष्ठी का अर्थ 60 और चतुर् माने 4, 60 और 4 64 अहोरात्र। पढ़ाई जब चालू हुई तो कैसे पढ़ते थे? रात दिन पढ़ते थे, मतलब गुरु की सेवा के अलावा जब भी खाली होते केवल पढ़ना 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 पढ़ना। तो गुरु जी पढ़ा देते थे, उच्चारण करा देते, उच्चारण करते थे, सुन लेते थे, उसके बाद आपस में याद परस्पर सुनाना लिखना जो भी था। रात दिन अहो रात्र इस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। जब विद्यार्थी है तो उसे सुख का अर्थी नहीं होना चाहिए, सुखार्थी नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी है तो सुखार्थी न हो, और सुखार्थी है आराम चाहता है तो विद्यार्थी नहीं होना चाहिए। सुखार्थी न कुतो विद्या, जो आराम चाहता है, सुख से रहना चाहता है, अच्छा खाना पीना और सोने में फॉरवर्ड है, वो क्या विद्या पढ़ेगा? सुखार्थी न कुतो विद्या, विद्या के लिए मेहनत करना पड़ता है। या आराम से प्रसाद पा करके और सो करके भागवत याद नहीं होगा, इसे रात दिन पढ़ना चाहिए। कुछ लोग ये सोचते हैं बस हम एक दो अध्याय सवेरे पढ़ लिए हो गया, महापंडित हो गया। क्या पंडित होंगे? एक एक मिनट पर बांचना पड़ेगा श्लोक देखकर। भगवान पढ़ रहे हैं तो रात दिन केवल पढ़ने पर पड़े, श्री बलराम जी के सोचते तो रात अहो रात्र, रात में सो नहीं पाते थे। विद्या ऐसे पढ़ी जाती है वास्तव में। अभी कुछ ही वर्ष पहले हम लोगों ने देखा है बचपन में किस तरह से बच्चे सब भोर में पढ़ा करते थे, लड़के भोर में पढ़ते थे, और अब के विद्यार्थी तो बस। तो अच्छा है कि सरकार 7 बजे स्कूल चालू कर देती है, अगर ना करे तो जब तक चालू नहीं स्कूल होगा तब तक सोए रहेंगे, आधा घंटा पहले उठ करके जल्दी जल्दी पहन करके चले जाए। और सारी विद्या बस कंप्यूटर में है, कोई चीज देखना हो खचखच, और यहां कोई विद्या नहीं है, दिमाग में कुछ नहीं है। थोड़ा जोड़ना हो, 9 और 7 जोड़ना हो तब भी कंप्यूटर चाहिए, है ना? कोई पढ़ाई नहीं है, कोई इस तरह की बात नहीं। ये भागवत आदि भी ये सब सीडी में रखा हुआ है, तो सीडी में ही रह जाएगा, सीडी नहीं माइंड में करना होगा। माइंड में करने के लिए जिह्वा से उसे पढ़ना पड़ता है, रात दिन पढ़ना। तो भगवान यह भी शिक्षा दे रहे हैं कि इस तरह पढ़ना चाहिए। अहो रात्र चतुष्षष्ट्य संयतौ तावती कला, तावती मतलब 64 कला, 64 दिन में 64 कला सीख लिए। श्रीधर स्वामी ने सब कलाओं का नाम लिखा है, एक एक दिन में एक कला। और ये कलाओं के विषय में 64 दिन कह रहे हैं, और वेदों का जो उन्होंने प्रवचन किया केवल श्लोक बोलते गए बोलते गए बोलते गए, उसको तो ग्रहण किया। अथवा चतुष्षष्ट्य बता रहा है कि श्रीकृष्ण बलराम अवंतिका में केवल 64 दिन रहे, 64 दिन में ही सब कुछ सीख लिए, सर्व विद्या प्रवर्तक है, पढ़ाई तो एक नाटक है भगवान का, ये सर्व विद्या प्रवर्तक और समस्त विद्याओं के प्रवर्तक। परंतु ये भी दिखाया गया है कि विद्या वे प्राप्त किए तो कंटिन्यूअस मन को कंसंट्रेटेड कर कोई दूसरा काम नहीं, कोई दूसरा विचार नहीं, केवल विद्या पढ़ना विद्या पढ़ना पढ़ना पढ़ना। ये नहीं कि 9-10 बजे प्रसाद पा करके इसके बाद अब सोए और इतना सोए कि अब मंगला आरती में भी नहीं उठे और हैं विद्यार्थी ब्रह्मचारी हैं। मंगला आरती बीतते बीतते तैयार हो गए और सवेरे देखा जाता है कि ब्रह्मचारियों को कोई आवाज नहीं, कोई पाठ नहीं, कुछ नहीं। विद्यार्थी को कैसे होना चाहिए ब्रह्मचारियों को, दादुर धुनी चाहूं दिशा सुहाई, वेद पढ़े जनुबत समुदाय। भगवान श्री राम कहते हैं लक्ष्मण जी से कि चारों तरफ मेढक की आवाज बहुत सुंदर लग रही है, अपने अपने कंठ में स्वर में राग में सब भें भें टें टें करते हैं, तो उसको भगवान कह रहे हैं कि सुहाई, ये बहुत सुंदर लग रहा है। क्योंकि इससे एक बात शिक्षा मिलती है कि इसी तरह से ब्रह्मचारी विद्यार्थी सब पढ़ते हैं, कोई भगवद गीता पढ़ रहा है, कोई चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा है, कोई भागवत पढ़ रहा है, कोई नरोत्तम दास ठाकुर के गीत गा रहा है, तो अपने अपने कंठ में सब, और उस समय परवाह नहीं करनी चाहिए कि दूसरे को डिस्टर्ब हो रहा है। एक मेढक एक परवाह नहीं करता एक दूसरे मेढक को हमारा अच्छा नहीं लगता, हमें बोलना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको विद्या व्यसन कहते हैं, विद्या में आसक्ति। हरीश्वर जी लिखते हैं न रात्रि न दिनम चापि न च सौख्यम न चा सुखम विद्याभ्यास रतः पश्येत इति स्पष्टम तथा कृता। श्री कृष्ण और बलराम के कृत्य से यहां स्पष्ट हुआ कि विद्याभ्यास रतः, विद्या के अभ्यास में रत व्यक्ति को ब्रह्मचारी को, अब ये नहीं देखना है कि ये रात है ये दिन है, न रात देखता है न दिन देखता है, न सुख देखता है न दुख देखता है, न सौख्यम न चा सुखम च असुखम, आराम से हैं ये हैं वह नहीं, केवल विद्या में उसकी मति लगी रहती। तो न रात्रि न दिनम चापी न सौख्यम न चा सुखम विद्याभ्यास रतः पश्येत इति स्पष्टम तथा कृतम। भगवान के इस आचरण से यह बात स्पष्ट हुई क्योंकि अहो रात्र चतुष्षष्ठ्य, रात दिन पढ़ते रहे। तो इसके बाद जब पढ़ लिए तो गुरु दक्षिणाचार्यं छंदया मासतुर निरप, हे महाराज इसके बाद अपने गुरु से कृष्ण बलराम दक्षिणा के लिए प्रार्थना किए, गुरु जी हम कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए हमारी योग्यता के अनुसार हम आपके लिए क्या सेवा करें। हरीश्वर जी कहते हैं अदक्षिणो गुरुर्जस्य स सर्वत्राप्य दक्षिण भवन्ति इति विभाव्यतत्कर्तुम तम स्वम स दक्षिणम। जिसका गुरु अदक्षिण है वाम है, अरे अदक्षिण का अर्थ है दक्षिणा नहीं जिसको दिया गया, और अदक्षिण का अर्थ है कि प्रतिकूल है वाम है, दक्षिण का अर्थ है अनुकूल। तो जिसका गुरु अदक्षिण है उसके लिए सर्वत्र अदक्षिण सब लोग रहेंगे, वक्र रहेंगे। भवंती इति विभायतत सत्कर्तुम तम स्वम सदक्षिणम। तो भगवान ने अपने गुरु को सदक्षिण करने के लिए अनुकूल करने के लिए, हमेशा प्रसन्न रहे, हमेशा इनका आशीर्वाद रहे, इसके लिए दक्षिणा की प्रार्थना की। गुरु रानिर्ण्यम आयाति न पुमान दक्षिणाम बिना व्यजिज्ञ पतकृतज्ञ सब विधि में सम विधि में वम विबोधयन। जिस गुरु का ऋण नहीं चुकता है दक्षिणाम बिना, दक्षिणा के बिना। पहले के गुरु सब गृहस्थ होते थे पढ़ाने के लिए, तो गुरु की को दक्षिणा की जरूरत पड़ती थी। तो जिसका गुरु जो चाहता है कि गुरु से ऋण उतर जाए, तो उससे चाहिए कि दक्षिणा, दक्षिणा के बिना ऋण नहीं उतरता है, इस विधि को बताने के लिए भगवान अपने गुरु से प्रार्थना किए कि आपको क्या दक्षिणा दें। भगवान बड़े कृतज्ञ हैं। तो श्री सुखदेव गोस्वामी अब कहते हैं कि जब भगवान ने प्रार्थना किया बलराम जी ने, तब द्विजस तयो तयोस्तम महिमान मद्भुतम संलक्ष्य राजन अतिमानुषी मतिम सम्मंत्र पत्न्या स महानवे मृतम बालम प्रभासे बरयाम बभुआ। तो गुरु जी अपनी पत्नी से परामर्श किए, इनकी महिमा के विषय में जानते थे। तम महिमानम अद्भुतम, इन दोनों लड़कों की अनंत अद्भुत महिमा को जानते थे, सुने सुन करके, और यहां भी देखे अनंत महिमा, अद्भुत महिमा। केवल एक बार के उच्चारण से सारे वेद शास्त्र धारण कर लिया उन्होंने, यह प्रत्यक्ष महिमा देख रहे। और गुरु जी ने देखा कि जब एक बार के उच्चारण से धारण कर रहे हैं, तो वो भी धारावाही कब बोलते हैं, जितना ज्यादा ज्ञान हो जाए उनको, तो यह अद्भुत महिमा है ना। हम लोगों को तो कई बार आवृत्ति कराई जाती है, बोला जाता है, लेकिन कहा जाए कि ठीक है किताब बंद कीजिए और बोलिए, तो ऑफ हो जाएगा दिमाग। एक श्लोक को याद करने में कितना आदमी बुद्धि लगावे, लेकिन नहीं हो पाता। भगवान श्री कृष्ण तो ब्राह्मण श्रेष्ठ है, संदीपनी मणि अपने संदीपनी जी अपनी पत्नी से परामर्श किए, इन दोनों बच्चों की अद्भुत महिमा है, अद्भुत प्रभाव है, तो इनसे इनकी क्षमता के अनुसार दक्षिणा लेनी चाहिए, मंत्रणा की क्या मांगा जाए, क्या मांगा जाए। तो उनकी पत्नी ने कहा कि जो प्रभास में हम लोग तीर्थ करने गए थे, तो बच्चा को समुद्र का लहर डुबा दिया, मर गया है, उस बच्चे को मांगिए। समुद्र में ज्वारभाटा आया था, अपने लहरों से उस बच्चे को ले गया समुद्र, तो उसको पत्नी ने कहा कि उसी को मांगा जाए। हरिश्री जी कहते हैं कि बुद्धिमान अपि विद्वान अपि आत्मकार्यम विविक्त धेहि कुर्यात हितज्ञम पृष्ठैव पत्नी मंत्रादिति स्फुटम्। बुद्धिमान व्यक्ति भी हो, परम विद्वान हो, लेकिन फिर भी कोई विशेष काम करना हो, तो अपना हित जानने वाले व्यक्ति से पूछना चाहिए, और गृहस्थ है तो अपनी पत्नी से जरूर पूछे। इसी से संदीपनी जी अपनी पत्नी से पूछे, तो उसने कहा कि पुत्र चाहिए। वंश वृद्धि से जितना सुख मिलता है किसी व्यक्ति को, उतना और किसी चीज से नहीं, तो इसीलिए भगवान से प्रार्थना की। तो ये बात सुनकर के दोनों भाई चले प्रभास में गए, कहां उज्जैन है और कहां प्रभास, बिल्कुल समुद्र के किनारे, पश्चिम समुद्र के, गुजरात के पश्चिम बिल्कुल, जो गए वहां, वे कहे पहले गुरु से ठीक है हम आपके पुत्र को लाएंगे, और यह करके कह करके दोनों महारथी अब ब्रह्मचारी भेष में नहीं रहे, तुरंत क्षत्रिय वेश में अस्त्र शस्त्र से लैस होकर गए, और उनकी इच्छा से रथ प्रकट हुआ वहां। यह नहीं समझना चाहिए कि वसुदेव जी रथ भेजे थे कि अब लड़कों को बुलाया जाए, अपनी कार भेज दिए थे कि पढ़ाई खत्म हो जाएंगे, रथ भगवान की इच्छा से ही उपस्थित हुआ, और दोनों भाई उस रथ पर चढ़े। तथे तथारूह्य महारथ रथम, ये महारथी रथ पर चढ़कर प्रभासम आसाद्य प्रभास पहुंचे, दुरंत विक्रम, दुरंत पराक्रम है, दुरंत बल है दोनों में। बेला पर जाकर के, समुद्र के किनारे जाकर के और बैठे दोनों थोड़े काल के लिए, मानो समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं, बैठे प्रणाम किए समुद्र को, क्योंकि समुद्र पूज्य है तो प्रणाम किए बैठे। तो भगवान की इच्छा को समझ करके समुद्र मूर्तिमान प्रकट हुआ और कृष्ण बलराम की पूजा किया। पूजा कई प्रकार से किया। इसके बाद समुद्र बोला, भगवान ने कहा, जब पूजा कर लिया तो भगवान ने कहा, तमाह भगवान आशु, श्री कृष्ण बोले, गुरु पुत्र प्रदीयता, हमारे गुरु पुत्र को लाओ, हमें सुना है कि तुम अपनी लहरों से बहा कर ले गए हो उस लड़के, कई साल पहले की बात है, बच्चे को बहा करके ले गया था समुद्र, तो समुद्र को आज्ञा दिया भगवान ने। भगवान श्री राम के पास भी समुद्र मूर्तिमान होकर के आया था सेतु बंधन से पहले। तो यहां पर भी कथा है कि वो आया तो भगवान ने आज्ञा दिया, गुरु पुत्र आशु प्रदीयता, जितना जल्दी हो गुरु पुत्र को लाओ, आज्ञा दे रहे भगवान, ऐसा नहीं कि प्रार्थना करिए लाओ। बैठे वहां पर और पूजा किए समुद्र प्रकट होकर के, तो कैसा पुत्र, किसका पुत्र, तो गुरु पुत्र, कहां मैं लिया हूं, अगर अगर समुद्र पूछे तो कहे, शोषा विह त्वया ग्रस्तो, इस प्रभास में तुमने उसको ग्रस्त किया था, क्या आज्ञा है भगवान, तुमने यहां ग्रस्त किया था बालको महतोर्मिणा, वह बच्चा था और तुमने महान लहर से, बहुत उत्ताल तरंग से उसको बहा कर ले गए, कहां है जल्दी लाओ, आज का सारी दुनिया बैठ करके एक डूबे हुए बच्चे के लिए कहे समुद्र से, सारे मिनिस्टर, सारे देशों के प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति सब, सब एक व्यक्ति के लिए समुद्र के पास जाकर कहे, समुद्र वो बच्चा को तुम बहाए थे लाओ, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, बल्कि कुछ देर में भूख लगेगी, प्यास लगेगी, भागेंगे नाश्ता आदि के लिए कि कुछ नहीं सुन रहा है, लेकिन भगवान आज्ञा दिए लाओ। समुद्र हाथ जोड़कर बोला, नैव आहार समहम देव दैत्य पंचजन्म, हे देव, हे परम पूज्य प्रभु, मैं नहीं बच्चे का हरण किया हूं, मैं नहीं लिया हूं, समुद्र वास्तव में नहीं लिया था, तब कौन लिया, तो कहता दैत्य पंचजनों महान, एक महान भयानक दैत्य रहता है हमारे भीतर समुद्र में, अंतर जल चरह कृष्ण, हे परम सुंदर परम बलवान श्री कृष्ण, वह दैत्य अंतर जल चरह, वो जल के अंदर रहता है, उसकी शक्ति है जल के भीतर रहता है और शंख रूप धरोसुर और शंख के रूप में रहता है, शंखासुर शंखासुर। तो शंख चूड अलग है जिसको ब्रज में भगवान ने मारा, उसका तो जो ऊपर अपना बाल संवारता था तो शंख जैसा, इसलिए उसको शंख चूड कहते हैं। और ये शंख के आकार में समुद्र में रहता था। तो कृपया अब उससे पूछा जाए, सरकार हमने नहीं हरण किया है, कहाँ रहता है? तो समुद्र के अगाध समुद्र के भीतर रहता है, समुद्र के भीतर रहता है। आस्ते तेना हितो नूनम तत्सुत्वा सत्वरम प्रभु जलम आविश तम हत्वा ना पशुदय अर्भकम। श्री बलराम जी को भगवान ने कहा कि भाई आप रुकिए और समुद्र के जल में वे कूदे श्री कृष्ण, समुद्र में भीतर जाकर के खोजने लगे तो शंखासुर मिला, शंख के आकार में उदय, उसको देखते ही भगवान ने मार दिया, लेकिन उसके उदर में बच्चे को नहीं देखा। उसके उदर में बच्चे को नहीं देखा ततः संयमनीम नामा जमस दैतामपुरी। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ, इसके पेट में बच्चा नहीं है। तब वे संयमनीपुरी चले गए, जमराज जी का जो लोक है जहां मर करके लोग जाते हैं। ततः संयमनीम नामा जमस दैतामपुरी, पूछने के लिए वो लड़का कहां गया, कहां मर करके गया, लीला कर रहे हैं, सब जानते हैं कि कहां है। तो जमराज के यहां गए, संयमनीपुरी उसको कहते हैं जो कंट्रोल में रखती है सिटी, दुनिया को कंट्रोल में रखती है। जमराज के भय से ही कुछ लोग ठिकाने में रहते हैं, नहीं तो यहां तो बच जाते हैं। यहां सरकार को धोखा दे देते हैं, किसी मंत्री को धोखा देते हैं, अधिकारी को, लेकिन जमराज को धोखा नहीं दे सकते। संयमनीपुरी में रहते हैं, कंट्रोलिंग सिटी, संयम। तो वहां गए भगवान, वहां जाकर के भगवान ने शंख बजाया। शंख कहां से लिए थे? इसी को मार करके शंख लिए थे। शंख के रूप में रहता था तो वही शंख नहीं, भीतर गए समुद्र में तो अब शंख लेना चाहिए, समुद्र में शंख मिलता रहता है। तो भगवान उसके शंख को लिए, पंच जन्य के शंख को लिए, इसीलिए उसको पांच जन्य कहते हैं। शंख बहुत अद्भुत शंख था, जहां जो मिले लेना चाहिए ना, समुद्र में डूबे बच्चा तो नहीं मिला, लेकिन शंख मिला तो पांच जन्य शंख ले लिए और बजाते हुए आए संयमनीपुरी में। उसका शंख क्यों लिए भगवान, इस पर हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि बेकार इसको मैं मार दिया तो इसका डर हर लू, डर का अर्थ होता है डर भय, तो उसका भय दूर कर दिया भगवान ने, डर हर लिया। डर माने शंख भी होता है, उसका भय दूर कर दिया, जन्म मरण का भय दूर कर दिया, मुक्त कर दिया, इसका अर्थ। तो आए जमराज के यहां, तो जमराज जी शंख निर्हार्द ना करना, शंख की आवाज सुन करके आए, तो बुलाना नहीं पड़ा, कोई खबर नहीं देना पड़ा भगवान को कि हाजिर करो कहां है जमराज जी। शंख की आवाज सुन करके प्रजा संयमना जमा आए, मैं भूल गया, श्री बलराम जी भी गए थे वहां साथ में भगवान के। तो तयोह सपरजा महतिम चक्रे भक्ति प्रदीता, बहुत भक्ति से पूजा किए, भोग अर्पण किए, वस्त्र अर्पण किए, फिर धूप दीप लाए, निराजन किए, आरती किए, सब तरह से। जमराज जी महाभागवत हैं, भगवान को अपने घर आया देख करके बहुत प्रसन्न हुए, तो भक्ति से बढ़ी हुई महती पूजा की कृष्ण बलराम की। और इसके बाद नम्र होकर के पूछे, बोले, कृष्ण सर्वभूताशयालयम, अवनत होकर के पूछे, कहे भगवान कृष्ण से, सबसे पहले क्या बोले, लीला मनुष्य हे विष्णु जीवयोह करवाम किम, हे लीला करने के लिए अपना श्री विग्रह प्रकट किए हैं आप, हे विष्णु, हे सर्वव्यापक, आप सब जगह हैं, आप मथुरा में भी हैं, अवंतिका में भी हैं, प्रभास में भी हैं, जल के भीतर भी हैं, संयमनी में भी हैं, और क्षण भर में कहां से कहां प्रवेश करते हैं, इसीलिए विष्णु कहा गया है, कृष्ण को कहा विष्णु, लीला मनुष्य हे विष्णु, हे लीला करने वाले, हे विष्णु, हम आप दोनों का क्या प्रिय करें। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच, गुरु पुत्रम यहा नीतम, मेरे गुरु का पुत्र यहां लाया गया है, निष्कर्म निबंधनम, अपने कर्म के कारण कर्मबंधन में है, इस कारण से वो यहां आपके पास लाया गया है, आन यस्व महाराज, आप महान राजा हैं प्रजा के, तो हे महाराज, मच्छासन पुरस्कृतम, मेरा आदेश है, आप उसको मेरे सामने कीजिए, लाइए। भगवान आदर से बोले, महाराज, आप लोकपालों में एक श्रेष्ठ लोकपाल हैं, महाराज हैं, उस बच्चे को लाइए, मच्छासन पुरस्कृतम। भगवान ने ये कहा कि हम भीख मांगने नहीं आए हैं, मेरी आज्ञा है, लाइए उसको। तथेति तेनोपनीतम गुरुपुत्रम जदुत्तम दत्वा स्वगुरुवे भूयो वृणीस्व इति तमंत। ठीक है, जमराज जी ने कहा ठीक है प्रभु, जैसी आज्ञा। तुमको तो पता भी नहीं था कि यहां कौन आया है, कितने लोगों का हिसाब रखे, फिर खुजवाए किसी देव पर कहां कैसे आया, तो पता लगा कि हां आया है, आया। तब जमराज के यहां वो गया था तो उसी शरीर में नहीं गया था, जरा विचार कीजिए, शरीर तो यही डूब करके पानी में छूट चुका था उसका, लेकिन वहां भगवान की आज्ञा से जमराज जी लाए, तो भगवान किस तरह प्रारब्ध का हरण कर लिए, सब किए, वह बिल्कुल उसी बच्चे के रूप में जिस दिन बाहर था उसी रूप में आया, ला करके जमराज जी ने दिया, तो दोनों भाई बच्चे को लेकर देर नहीं किए, आए अवंतिकापुरी, फिर से वहीं प्रभास में समुद्र से प्रकट हुए और वहां से आकर फिर रथ पर चढ़े और चल दिए, आए अवंतिका में, अवंतिका में आकर के गुरु पुत्र को दिए, गुरु माता कितनी प्रसन्न हुई होगी बच्चे को हृदय से लगा करके रख करके, बड़े प्रसन्न हुए। बच्चा बिल्कुल नहीं था वास्तव में, वो थोड़ा बड़ा हो गया था, लेकिन बड़ा लड़का क्या समुद्र में नहीं डूब सकता है, लहर से डूब गया था, तो ला करके दिए, गुरु बड़े प्रसन्न हुए। और भगवान कृष्ण और बलराम जी ने कहा कि गुरु महाराज, और कुछ सेवा करने का अवसर दीजिए। बाप रे बाप, मरे हुए पुत्र को ला दिए और वो क्या कहे, ये भगवान ने गुरु दक्षिणा दिया। क्या किसी के विषय में ऐसा सुने हैं किसी ने गुरु को इस तरह से दक्षिणा दिया हो, कोई मरे हुए को लौटा सकता है, ये है भगवान की गुरुदक्षिणा, अद्भुत प्रभाव। तो जब भगवान कृष्ण और श्री बलराम जी कहे कि गुरु जी और क्या सेवा करें, दस से लगता था हमें तृप्ति नहीं हो रही है, और कुछ चाहिए, तो ब्राह्मण थे, धन आदि नहीं चाहते थे, तपस्या के धनी थे, विद्वान थे, वास्तव में जो विरक्त हैं और शास्त्रों के अध्ययन में लगे हैं उनको धन के चक्कर में नहीं पड़ने चाहिए, नहीं तो विद्या नहीं सीख पाते हैं। तो, लेकिन गुरुपुत्र जैसे दिया ऐसे ही कोई और असंभव कार्य करना है क्या है? तो गुरु जी कहे बस बेटा मैं धन्य हो गया। हरीश्वरी जी इस अवसर पर बहुत सुंदर उक्ति कहे हैं। गुरु जी अब आशीर्वाद देने लगे। भगवान की अद्भुत लीला है, इतना महान कार्य करके आए हैं तो उनको प्रणाम नहीं कर रहे हैं गुरु जी, आशीर्वाद दे रहे हैं। उसी आशीर्वाद को यहां कहा गया है, सम्यक संपादितौ, सम्यक संपादितौ, सम्यक संपादितो वत्स भवद्भ्याम गुरु निष्क्रिय। बेटा तुम दोनों ने गुरु की यथोचित सेवा की है, सम्यक पूर्ण रूप से तुम गुरु के ऋण से मुक्त हो। बहुत धन्यवाद। कौन जुष्मद्विद गुरु कामा नमा शिष्य पे, तुम्हारे जैसे शिष्यों का जो गुरु है उसकी कौन सी कामना पूरी नहीं हो सकती है। मैं पूर्ण मनोरथ हो गया, इसलिए नहीं कि मेरा पुत्र मिला, इसलिए मैं पूर्ण मनोरथ हूं कि तुम्हारे जैसा विद्यार्थी मिला हमको, तुम दोनों के समान। इस पर हरेश्वरी जी कहते हैं, प्राधीता सतसो भवन जदुपते शिष्या भविष्यन्ति च नयता दृक्त्रि जगत स्वपि त्रिसमये स्व श्राविकृत्यं क्वचित। हे जदुपते, हे श्री कृष्ण, इस संसार में अनेक अध्यापक हुए होंगे और उन अध्यापकों को अनेक शिष्य मिले होंगे और आगे भी बहुत मिलेंगे, इस समय भी हैं, पर ऐसे ऐसा शिष्य, दो शिष्य तीनों जगत में और तीनों समय में, भूत में, भविष्य में, वर्तमान में और पाताल में, पृथ्वी पर या स्वर्ग में, ऐसे शिष्य किसी को नहीं मिले होंगे। जो भाग्य मेरा है मुझे इस प्रकार के शिष्य मिले, ऐसा भाग्य किसी को नहीं मिला है। प्राधीता सपसो भवन जगपते शिष्या भविष्यन्ति च, बहुत हुए और होंगे लेकिन मैं कितना भाग्यशाली हूं को मुझे ऐसे शिष्य मिले। तत्सिद्धम भुवि निष्कलंक मतुलम भास्वत जसस्ते मुहु। तो सिद्ध है तुम्हारा निष्कलंक उज्ज्वल जस संसार में फैलेगा, अपने आप फैलेगा बेटा तुम्हारा जस। श्री कृष्ण को विशेष रूप से कह रहा हूं, तुम्हारा निष्कलंक मतलब धवल चरित्र उज्ज्वल जस भास्वत जस, जगमगाता हुआ जस सारे जगत में फैलेगा और तुमने मेरे वंश की वृद्धि किया, मेरे पुत्र की रक्षा किया, तो मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा वंश बहुत बढ़ेगा। गुरु आशीर्वाद दे रहे हैं, वंश वृद्धि का आशीर्वाद दे रहे हैं। तुमने हमारे वंश की रक्षा किया, तुम्हारा जदवंश बहुत फलेगा फूलेगा, तुम्हारे बहुत से पुत्र होंगे, तुम्हारी बहुत पत्नियां होंगी, सब गुरु का आशीर्वाद निकल रहा है। जो स्वाभाविक ही होने वाला है वही गुरु के मुख से निकल रहा है कि गुरु बड़े प्रेम से पढ़ाए हैं कृष्ण बलराम को, तो आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। सौर्जम किम किम धैर्य उत्तम गुणा, तुम्हारा सौर्ज संसार में फैलेगा, तुम में अद्भुत धैर्य है, अद्भुत गुण है, तुम में दान आदि सब गुण पूर्ण मात्रा में रहेंगे। जो भी संसार में है, सुख वैभव संपत्ति श्री जस सीमा पदम, तुम सबकी सीमा रहोगे बेटा, कृष्ण बलराम को कह रहे हैं, एकदम पूर्ण सब कुछ तुमको रहेगा। तब तुम धन्य मना निसर्गत, तुम तो धन्य हो, स्वाभाविक ही जन्म से ही तुम्हारा ये प्रभाव है। अब मैं तुमको क्या वर दूं? वर तो मैं अपनी वाणी को सार्थक करने के लिए दे रहा हूं कि जब होना ही है तो मेरी वाणी सार्थक हो जाए कि संदीपनी ने ऐसा वर दिया था। सब कुछ तुम में निसर्ग से है। देय संतु तैव मद वचन तो शीर्षर विभाजो निशम। सब तो होना ही है लेकिन वर देना चाहिए गुरु को, एक कर्तव्य है, इसीलिए मैं वर दे रहा हूं कि तुम समस्त संपत्तियों के भाजन बनो, समस्त ज्ञान के आकार बनो, आकर बनो। ये गुरु जी आशीर्वाद दे रहे हैं। उद्यत कल्पक विस्तृतम श्रुति सुखम संतान वृद्धन्वितम मंदा रात विजृंभितम सुजलजा नंताप सरह सेवितम राजत श्री हरिचंदनम चुतो लाशा बहा मदगिरा भूया नंदनवद गृहम तव चिराया पारिजातम गृहम। तुम्हारा घर कैसा हो इस विषय में बहुत साहित्यिक भाषा में हरिश्वरी जी लिखते हैं। उद्यत कल्प कविश्रुतम, तुम्हारे घर में कल्प वृक्ष हो, तुम्हारा जस फैलते। उद्यत कल्प कहते उद्यत कल्प कवि विश्रुतम, तुम्हारा जस ऐसा है जिसको उद्यत कल्प कवि विश्रुतम, बड़े बड़े महान कवि जैसे श्री नारद जी, भगवान शिव, शेषनाग, ये जो उत्तम कोटि के विद्वान हैं, वे तुम्हारे जस का गान करेंगे। दोनों अर्थ है, तुम्हारे घर में कल्प वृक्ष रहेंगे, सुशोभित रहेंगे। श्रुति सुखम, श्रुति सुख रहेगा, वेद शास्त्र का अध्ययन रहेगा ही, तुम जानते ही हो। और तुम्हारे जस की विशेषता बता रहे, तुम्हारा जस ऐसा होगा बेटा कि श्रुति को, कान को सुख देगा, कोई भी सुनेगा वो तृप्त हो जाएगा। तुम्हारा ऐसा जस फैल है। संतान वृद्धन्वित, तुम्हारा घर संतान वृद्धि से अन्वित रहे। मंदा रात विजृंभित, तुम्हारे आंगन में पारिजात वृक्ष रहे, मंदार रहे। इसका अर्थ है मंद अराति विजृंभित, तुम्हारे अराति तुम्हारे शत्रु बिल्कुल ढीले पड़ जाए, तुम्हारे शत्रु पराजित हो तुम्हारे सामने, तुम्हारे घर में मंदार कल्प वृक्ष रहे। सुजलजा नंताप सरह सेवितम, तुम्हारा घर सुजलज कमलों से भरे हुए अनंत अवसर सेवितम, अनंत सरोवर, सुंदर सरोवर से भरा रहे। तुम्हारे घर में मथुरा में द्वारका में बहुत सरोवर हो, उन सरोवरों में कमल खिला रहे। अथवा तुम्हारा घर अप्सरा सेवित, अप्सराओं से भी सुंदरी स्त्रियां तुमको मिलें, तुम्हारा घर भरा रहे। राजत श्री हरिचंदनम, हरिचंदन एक वृक्ष होता है, तो तुम्हारे घर में सुंदर हरिचंदन विराज। अथवा तुम्हारा घर ऐसा होगा कि तुम ही हरि हो, चंदन के समान सबको शीतल करने वाले। राजत श्री हरिचंदनम ससुर तो लाशा वह मद गिरा भूयाद नंदन वद गृहम तव चिराया पारिजातम परम। मेरी वाणी से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो, मद गिरा मैं आशीर्वाद देता हूं तुमको कि तुमको सब कुछ मिले, सब धन संपत्ति रहे। सौधा भिक्षम, तुम्हारा महल बहुत ऊंचा हो। सुधर्मो लसितम अविरतः, तुम्हारे नगर में सुधर्मा सभा हो। इसका बहुत बहुत अर्थ हुआ। कीर्तिर जगत जन विशुद्ध कृत अप्यपंका, तुम्हारी कीर्ति संसार के समस्त देवताओं को, मनुष्यों को, दैत्यों को विशुद्ध करने वाली हो और अपंका हो। अपंका कीर्ति जिस पर कोई पंक नहीं, कोई दाग नहीं है, तुम्हारा उज्ज्वल जस सबको पवित्र करे। श्री कृष्ण शोभित पदा अयम उज्ज्वल श्री, हे श्री कृष्ण, तुम स्वयं श्री कृष्ण हो। तो तुम्हारी उज्जवल कीर्ति सब जगह फैल है। क्षीराब्धि मिंदु मिभ राज महिष मीसम श्री चारदाम अपी सदा विमली करो तू। क्षीराब्धि इंदु भी इभराज महिष मीसम मतलब ऐरावत और शेषनाग क्षीर समुद्र और चंद्रमा जैसे ये उज्जवल हैं। उज्जवल का मतलब उज्जले हैं, ऐरावत हाथी बिल्कुल उज्जला है चांदी के समान, और क्षीराब्धि तो है ही और इंदु है चमकता है। अहिसम भगवान शेषनाग श्री शारदा मपि सदा विमली करो तू। जो क्षीराब्धि को और शेषनाग को इभराज को शारदा को भी विमली करो तू, इनको विमल करे अर्थात ये निरंतर तुम्हारी कीर्ति का गान करते रहेंगे। अस्थापित लीलया जेना त्वया अश्विन जात जामता, और तुमने जात जामता स्थापित किया है। याम का अर्थ होता है जमराज के दूत, जमजातना, तो तुमने जमराज की यातना से हमारे पुत्र को लाया है। तो मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ वेद शास्त्र जात जाम रहे, जात जाम का अर्थ कभी भूले नहीं, जो तुम शास्त्र पढ़े हो कभी भी एक अक्षर भी कभी भूलने न पाए, ये आशीर्वाद दे रहा हूं। और गुरु का वास्तव में यही आशीर्वाद सबसे सच्चा आशीर्वाद है कि जो पढ़ाया हूं वो कभी भूले नहीं। छंदांसी और जात जामानी, जाम का अर्थ होता है ब्रेक, टूट जाना है, कुछ समय बीतने पर कुछ विद्याएं भूल जाती हैं। तो तुम्हारा वेद शास्त्र पढ़ा हुआ और जात जामानी हो, जात मैंने बीता हुआ, जामानी मैंने ब्रेक या विस्मरण, जो पढ़े हो उसका कभी विस्मरण न हो, इस तरह से गुरु जी बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर कहते हैं कि मैं तुमको क्या आशीर्वाद दूं, बस मैं अपने को धन्य कह रहा हूं कि संसार में बहुत धन्य लोग होंगे, शिक्षक पढ़ाने वाले गुरु लोग धन्य भी होंगे, धन्यतर होंगे, लेकिन धन्यतम तो मैं ही हूं, मैं ही धन्य हूं, ऐसा शिष्य पाकर जाओ तुम अपने घर, तुम सदा विजयी होगे, तुम्हारे घर में सदा सुख रहेगा, और तुमने मेरे वंश की वृद्धि की है तो तुम्हारा वंश बढ़ेगा। गच्छत स्वगृहम वीरो कीर्ति बामस्त पावनी छंदांश जात जामानी भवंतु हो परतत। बेटा जो तुम वेद शास्त्र पढ़े हो, मैंने तुमको पढ़ाया है, तो पढ़ा हुआ वेद शास्त्र केवल इसी जन्म में नहीं परोत्र भी जन्म जन्म में हमेशा याद रहे। इस तरह भगवान को आशीर्वाद दिया जा रहा है, यह भी एक अद्भुत लीला है। गुरु नैव अनुज्ञा तौ रथे नालिन रंघसा आया तौ सौ पुरम तात पर्जन्य निन देन वई। गुरु से के द्वारा आज्ञा मिल गई, आज्ञा मांगे दोनों भाई कि तब हम जाना चाहते हैं घर मथुरा, तो वायु वेग वाले रथ पर चढ़े दोनों और आया तौ स्वपुरम, और शीघ्र ही आ गए। वायु वेग से चल रहा है रथ, तो बहुत तेज गति से चल रहा है। बीच रास्ते में किसी से मिलने का कोई जिक्र सुखदेव गोस्वामी नहीं कह रहे हैं। वो रथ चल रहा था आकाश में, ऐसा नहीं कि उसके लिए हाईवे चाहिए या नदी पड़ गई तो ब्रिज चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, वायु वेग से चला रहा स्वपुरम। कितना सुंदर शब्द है, अपने नगर में, मथुरा भगवान का अपना नगर है स्वपुरम, जहां वे जन्म लिए हैं, जहां नित्य रहते हैं, मथुरा भगवान जत्र नित्यम सन्निहित हरि। तो अपने नगर में दोनों भाई आए, रथ की आवाज कैसी थी, पर्जन्य निन्देन वही, बादल के गर्जन के समान उसके जो पहिए चल रहे थे और घोड़ों के टाप उसकी जो आवाज आ रही थी बादल के गर्जन, तो जब गरजता हुआ रथ वहां आया तो उनको देखने के लिए सब लोग निकले मथुरा के, जो बहुत दुखी थे पहले कृष्ण बलराम को बहुत दिन से नहीं देखे थे। तो समनंदन प्रजा सर्वा दृष्ट्वा राम जनार्दनो अपश्यन्त्यो बहुवहा हानि नष्ट लब्ध धनायव। बहुत दिनों से कृष्ण बलराम को नहीं देखे थे तो बड़े दुखी हो गए थे, तब ऐसे सुखी हो गए जैसे कोई अपने नष्ट धन को फिर से पा गया हो, खोया हुआ धन फिर से मिल गया हो। ऐसे दोनों भाइयों का दर्शन करके भेंट करके सब लोग बहुत सुखी हो गए। इस प्रकार श्री कृष्ण बलराम पढ़ाई पूरा करके और मथुरा में आ गए। श्रीमद् भागवत के अध्याय के अनुसार अब आगे की लीला यह है कि भगवान श्री कृष्ण श्री उद्धव जी को ब्रज में भेज रहे हैं। इसके बाद 46 और 47 अध्याय में भ्रमर गीत है और भगवान की कृपा से वो चाहेंगे तो भ्रमर गीत की कथा यहां की जाएगी। वो अध्याय के सीरीज के अनुसार वही पढ़ रहा है। आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप हमारा उत्साह बढ़ाए और बहुत संख्या में शांतिपूर्वक आपने कथा का श्रवण किया, हमें बहुत सुख मिला है। मैं इस बार बड़ा एकाग्र चित्त से कथा कहा, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि हमें कथा के समय भगवान के साथ रहने को मिला। हमारा मन उनको देखता था, मैं वाणी से वर्णन करता था लेकिन मन कृष्ण बलराम के साथ ही रहा मथुरा में। हमें बहुत सुख मिला है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बद्री विशाल प्रभु को भी बहुत धन्यवाद जिन्होंने आयोजन किया और उनके प्रेमी दिल्ली से आए हुए भक्तजन जिन्होंने प्रसाद की व्यवस्था किया, सब तरह से उनको सहयोग दिया, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। और जहां तहां से आए हुए भक्तजन जैसे बॉम्बे से, अहमदाबाद से, हैदराबाद से, भुवनेश्वर से, मायापुर से, कलकत्ता से और भी अनेक जगहों से, नेपाल से और अमेरिका से, यहां न्यू जर्सी अमेरिका से महेश पंडित दास आए हैं भक्तिचार्य महाराज के शिष्य, कथा सुनने के लिए ही यहां आता है और बहुत नियम से सुना, अपनी पत्नी के साथ कथा सुने और अनेक जगहों से लोग आए हैं जैसे सागर, मड़ावरा, झांसी, झांसी से ब्रजभूमि प्रभु आए, जैसे शिव जी कथा सुनने चलते हैं तो अपनी पत्नी के साथ, वैसे ही कई लोग अपनी पत्नी के साथ आए, बहुत सौभाग्य। कथा सुनने के लिए भगवान शिव कैलाश से मलय पर्वत गए थे तो संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, अगस्त जी ने पूजन किया तो कथा सुने फिर आया। भगवान शिव का और कोई काम नहीं है, बस केवल कथा कहना और सुनना, और कोई काम नहीं करते, उनके संकल्प से ही सब कुछ होता रहता है। एक काम धंधा तो लगा ही रहेगा लेकिन कथा के लिए 7 दिन काम छोड़ देना, धाम छोड़ देना, घर छोड़ देना, बच्चा परिवार छोड़ करके आना और नहीं तो ले करके आना ये दोनों कार्य करने वाले बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे हमसे कई लोग कहे कि तो हम जा रहे हैं आज, तो हम सबके प्रति यही कहते थे कि नहीं, सर्व त्याग करी करे कृष्ण कृष्ण र भजन, आप आज की कथा सुन करके जाइए। ऐसे फिर भी कई लोग गए, लेकिन उन्होंने त्याग किया, दो दिन रहे, चार दिन रहे, एक दिन रहे, उनके लिए भी धन्यवाद है, भगवान कृपा करें उनका गृह बंधन दूर हो और भगवान का भजन कर सके। बहुत माया प्रबल है वास्तव में, और इतनी आवश्यकता बुद्धि पैदा करती है कि अब क्या न छोड़ते बनता है न कुछ भी, और बच्चों को कैसे छोड़े, परीक्षा चल रही है और किसी का जॉब है, अगर नहीं ड्यूटी अटेंड करेगा तो फायर कर देंगे, हटा देंगे। तो ऐसे में जो व्यक्ति दो दिन के लिए भी आए, एक दिन के लिए आए, चार दिन के लिए आए, वे भी धन्यवाद के पात्र है। तो भगवान की कथा सुनने आए तो गंगा जी का दर्शन हुआ, स्नान हुआ, और यहां पर भगवान का अभिषेक देखे, चंदन यात्रा देखे, वैष्णव के साथ मिलन हुआ। किसी वैष्णव उत्सव में भाग लेने से बच्चों पर, स्त्रियों पर, सब पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सब देखते हैं कि इतनी लोग झूम रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो जो देखने का प्रभाव होता है वो अचल रहता है हृदय पर। इसलिए अपने बच्चों को, अपने संबंधियों को लाना चाहिए, भले एक दिन के लिए रहे या दो दिन, देखें तो दृश्य देखें। जैसे मायापुर में गौर पूर्णिमा का फेस्टिवल होता है तो इतनी लोग आते हैं सारी दुनिया से, देख करके प्रभाव पड़ता है, सारी दुनिया से गोरे गोरे सब भरे रहते हैं, और कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देख करके ही मन प्रभावित हो जाएगा। तो बहुत से लोग आए, मैं सब स्थान का नाम नहीं रख सकता, लेकिन कुछ का जैसे वाराणसी से, इलाहाबाद से, कानपुर से, मुरादाबाद से, लखनऊ से, वृंदावन से, दिल्ली से, जमुनानगर से, हस्तिनापुर से, कुरुक्षेत्र से, अम्बाला से, पानीपत से, सोनीपत से, बागपत से, सब जगह से लगाए। हाँ, सब जगह से आए हैं, सहारनपुर से, मेरठ से, गाजियाबाद से, और राजस्थान से भी आए हैं। राजस्थान से सर्वज्ञ कृष्ण प्रभु आए हैं, जो पुष्कर में भागवत करा रहे हैं 4 से 10 जून को। और कुरुक्षेत्र में उत्तम श्लोक दास जसपाल जी आए कुरुक्षेत्र से, वे दिसंबर में गीता जयंती पर भागवत करा रहे हैं। ऐसे अनेक भक्त आए, अनेक माता जी आए। हाँ, जालंधर से, तो मुख्य नाम कह देते हैं पंजाब से, तो सभी शहरों को ले लेना चाहिए, सब जगह से कुछ न कुछ आए हैं, लुधियाना से, चंडीगढ़ से, कई शहरों से लोग आए, हरियाणा के अनेक शहर का नाम मैं रखा, भिवानी से, रेवाड़ी से, राजस्थान। और बिहार से भी आए, पटना से, कई जगह से, कई गांव से लोग आए हैं। और बिहार में खडिहां से आए, खडिहां श्रीमद् भागवत कथा के लिए प्रसिद्ध है। हरिद्वार और खडिहां दो की चर्चा होती है, जहां भक्त लोग एक साथ रहते हैं, दो दो बार, तीन तीन बार कथाएं होती हैं, जो भी आए इस कथा में सभी को भगवान राधा माधव जी धन्य करें, माता गंगा से प्रार्थना है। और सबसे अंत में कृष्ण बलराम से प्रार्थना है कि सबको अपना समझें, अपनी कृपा दें। हरे कृष्ण।